मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا۔ سورہ معارج کی ابتدائی آیات ہیں، پچھلے ہفتے بھی انہی آیات پر درس ہوا تھا۔ پچھلے ہفتے جو مضمون چل رہا تھا ان آیات سے متعلق، میں اسی کو آج لے کے آگے چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی۔ اچھا اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے میرے کان میں کہا ہے کہ میں نے کہا تھا وصیت کے بارے میں بتاؤں گا، تو وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ بیان میں۔ ویسے تو کان میں اتنی زور سے بولا ہے کہ سب کے کان میں بات پہنچ گئی ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کچھ مضمون ایسے ہیں قرآن مجید کے جو اللہ نے بار بار ریپیٹ کیے ہیں، اور ان مضامین کو ہم بہت ہلکا لیتے ہیں، لیکن اللہ ان مضامین کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں۔ وہ مضامین کیا ہیں؟ بھائی، کسی نے بنایا ہے، ہم آٹومیٹیکلی بنے نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں اس بات کی بڑی ویلیو ہے۔ ہم تو اس کو ایک نظریے کے طور پہ لیتے ہیں، بھائی کچھ لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ یہ اس طرح سے کائنات بنی ہے، کچھ کا کانسیپٹ ہے کہ نہیں جی کوئی گاڈ ہے، بہت ہلکا لے کے کہ دو رائے ہیں، رائے کا اختلاف ہوتا ہے۔ کچھ سائنسدان کہتے ہیں بنی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں جی نہیں بنی، سوری بنایا نہیں ہے، آٹومیٹیکلی بنی ہے، کچھ کہتے ہیں بنایا ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ اتنا ہلکا ٹاپک نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایکچولی میری یہ تھیوری ہے، ایکچولی میرا نظر۔ لوگ کہتے ہیں نا جو براڈ مائنڈڈ لوگ، براڈ مائنڈڈ لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ان کو آگے بتاؤ نا تمہاری بیگم کے فلاں سے تعلقات چل رہے ہیں، کہ ایکچولی انسان کو چاہیے کہ ٹریننگ کرے، اپنی وائف کو سمجھائے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کی نظر میں کوئی مسئلہ بڑا ہے ہی نہیں۔ ان کی نظر میں بڑا مسئلہ ہے کہ پیسے روکھڑا ہے یا نہیں۔ جو غریب آدمی ہے وہ ناکام ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ کیا ہے بھائی، کامیاب۔ ایک بیوی بھاگے گی دوسری آ جائے گی، اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ تو کچھ مسائل غریبوں کے ساتھ ہیں، تو شکر کرو اللہ نے زیادہ مالدار نہیں بنایا، تھوڑا سا غریب رکھا ہے ہم سب کو، غریب ملک میں پیدا کیا، اس کی وجہ سے تھوڑے سے غیرت کے مسائل ہمارے ساتھ ابھی الحمدللہ باقی ہیں، ورنہ انگریز بن جاتے۔ انگریزوں میں ہوا کیا ہے، پیٹ بھر گئے ان کے، مسائل ہی ختم ہو گئے، سب کچھ کھانے کو مل رہا ہے، علاج فری ہے، تو غیرت ویرت مارکیٹ سے کیا ہو گئی، شارٹ ہو گئی۔ اس سے بہتر ہم غریب ہیں، تھوڑے سے ٹینشن تو لیتے ہیں نا بعض چیزوں کی۔ تو اللہ کی نظر میں یہ مسئلہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اللہ کی نظر میں یہ مسئلہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ پچھلے ہفتے بھی اسی پر بیان ہوا کہ میں ایک ہی ٹاپک پر بار بار ہوتا رہے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ یہ بھی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ میں جب سورت شروع کرتا ہوں نا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پہلے مضمون تو دماغ میں بیٹھے نا، اس کے بعد آگے سورت سمجھ میں آئے گی۔ क्योंकि अल्लाह भी इन्हीं मसाइल को बार बार रिपीट करते हैं, तो हम क्यों ना रिपीट करें भाई। और अल्लाह ने भी मुख्तलिफ अंदाज से रिपीट किया है, तो हम भी मुख्तलिफ अंदाज से रिपीट करेंगे। अंदाज सेम होगा फिर इंसान परेशान होना शुरू होता है, बोर होना शुरू होता है। तो अल्लाह की नजर में ये इतना बड़ा मसला है कि अल्लाह कहता है जो मुझे नहीं मानता उसका अंजाम बहुत भयानक है, हमेशा हमेशा की आग में डाल दूंगा उसको, हमेशा की आग में। क्यों? उसने मेरी निशानियों का इंकार किया। तो ये ऑप्शनल नहीं है कि आप अल्लाह को माने या ना माने, अल्लाह की नजर में ऑप्शनल नहीं है, इंसानों की नजर में है। क्योंकि इंसानों के ये मसाइल ही नहीं है, इंसानों के मसाइल तो पैसा है, पैसा आ जाए, अय्याशी आ जाए, पेट भर जाए, बस ये मसला है। अल्लाह कहते हैं मैंने जिस टास्क के लिए, जिस हदफ को दे के तुम्हें पैदा किया है, उससे हटोगे तो फिर देखें, ये जो सिराते मुस्तकीम है ना, जो जहन्नम के ऊपर पुल है, उलमा ने बयान किया है कि असल में ये वही सिराते मुस्तकीम है जिस पर आप दुनिया में चले, उसी को अल्लाह कयामत के दिन एक शक्ल दे देगा। जो दुनिया में जैसे चला होगा वहां भी वैसे ही चलेगा उसके ऊपर, वहां भी वैसे ही चलेगा उसके ऊपर। दूसरा मसला मैंने अर्ज किया था, दूसरा मसला सबसे बड़ा अल्लाह जो बयान करते हैं वो क्या है कि वो एक है, बनाने वाला क्या है, एक है, और इबादत और गुलामी के लायक सिर्फ और सिर्फ वो ही है। यहां भी गड़बड़ करते हैं लोग, कुछ लोग तो अल्लाह के सिवा चीजों को पूजना, कब्रों से मांगना, कब्रों को सजदे करना, बुतों को पूजना, और ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया। मुख्तलिफ तरीकों से सोसाइटी में शिर्क है। मेरी चंद दिन पहले किसी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि सुना है आपको खिलाफत मिल गई, इजाजत बैत मिल गई। मैंने कहा मैंने भी ऐसे ही सुना है। तो कहने लगे कि ये जो शेख होता है ना, इसको मुरीद के बारे में पता होता है सब कुछ, जो पीरो मुर्शिद होता है ये देखता है, अल्लाह ने कुछ इनको कुछ एक अलग से कोई सलाहियत दी होती है, तो कुछ चीजें इनको पता चल जाती हैं कि ये कितना पहुंचा हुआ है, उस बेस पे खिलाफत देते हैं ये। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, कोई भी बुजुर्ग जो है ना, जो इजाजत बैत या खिलाफत, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है खूब समझ लो, किसी का इल्म भी अल्लाह की तरह कामिल बोलो नहीं है। होता जो असल में होता है, आजकल तो जाहिल पीर मार्केट में बहुत आ गए हैं ना, असल में खिलाफत का तसव्वुर किया है, क्योंकि ये भी मुरीदों में अपने पीर के मुतालिक ना एक नौयत का शिर्क है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा वाजे कर रहा हूं। देखो हुआ ये, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा दो किस्म की बैत लिया करते, सहाबा दो किस्म की बैत किया करते थे। एक बैत होती थी जिहाद पर, जो कमांडर से होती है, जो अमीर से होती है, कि हम लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। ये बैत भी सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे की है, जैसे बैत रिजवान जो सुलह हुदैबिया के मौके पे नहीं बैत हुई थी, तो ये बैत किस पर थी कि ए नबी हम लड़ेंगे मुशरिकीन से और हम मैदान जंग से पीछे नहीं हटेंगे, और उस्मान के खून का बदला जब तक हम ना ले लें हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। नबी के दुनिया से जाने के बाद ये बैत मनसूख हो गई या सुन्नत है? उसके बाद भी सुन्नत है, जो भी कमांडर होगा उसके हाथ पे आप बैत हो सकते हैं, या जबानी कौल इकरार करना ये भी बैत है। आज जब भी कोई आर्मी में जाता है, फौज में जाता है, या किसी मुल्क की नेशनैलिटी लेता है, उससे ये मुआहदा करवाया जाता है कि आप कंट्री के साथ वफा करेंगे, आप अमेरिका की नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करें तो वहां भी आपसे ओथ लेना कहते हैं ना, तो भी बैत ही एक किस्म की मुआहदा है, एग्रीमेंट है, भाई हम कंट्री के खिलाफ नहीं चलेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। यूके की नेशनैलिटी जब आप लेते हैं तो वहां भी वो आपसे हल्फ उठवाते हैं, जब कोई वजीर आजम बनता है तो उससे हल्फ उठवाया जाता है। तो ये कदीम, ये कहां से चला है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से जिहाद पर बैत लिया करते थे। फिर ये बैत चली है खलीफा, جو خلیفہ ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں لوگ بیعت کرتے. نبی کے دنیا سے جانے کے بعد خلافت کی بیعت جو لی گئی ہے وہ حضرت ابو بکر سے کے ہاتھ پہ لوگوں نے کی بیعت. ایسا ہی ہے نا بھائی, ہم آپ کو امیر مانتے ہیں, ہاتھ بڑھائیے, بیعت ہونا شروع ہو گئے. بیعت کا مطلب کیا ہے؟ اب حکومت کس کی ہے؟ آپ کی. آپ جو آرڈر دیں گے ہم اس کو پورا کریں گے, آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے. یہ بیعت کہلاتی ہے خلافت کی بیعت. خلافت سے مراد حکومت والی خلافت. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے آپ کو فالو کرنا ہے, انتظامی امور میں آپ کی ہم اطاعت کریں گے. نبی نے ایک دوسری بیعت بھی لی ہے, وہ تھی روحانیت کی بیعت. وہ بیعت کیا تھی؟ صحابہ کرام آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیا کرتے تھے کہ ہم گناہوں سے بچیں گے, ہم آپ سے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں, ہم شرک سے بچیں گے, گناہوں سے بچیں گے. یہ خلافت کی بیعت نہیں ہے, یہ اعمال کی بیعت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب بیان کیا وہ منصب کیا, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, اللہ نے انہی لوگوں میں ایک انہی میں سے رسول بھیجا. یعلمہم الکتاب, اس رسول کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو قرآن سکھانا. اس سے پتہ چلا قرآن اخفل طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن حالانکہ عربی میں تھا اور نبی بھی صحابہ بھی عربی جانتے تھے, انہی کی زبان میں نازل ہوا, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یتلو علیہم آیاتہ, نبی ان کو قرآن پڑھ کے بھی سکھائیں گے, سوری پڑھ کے بھی سنائیں گے, لیکن یہ پڑھ کے سنانا کافی نہیں ہوگا, بلکہ یعلمہم, نبی ان کو سکھائیں گے بھی. یہاں سے وہ مسئلہ تو حل ہو گیا. لوگ کہتے ہیں میں خود قرآن سمجھتا ہوں, مجھے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. ارے بھائی, صحابہ خود نہیں سمجھ سکتے تھے, ان کو تو نبی نے سمجھایا ہے, تو تم کیسے خود سے سمجھ سکتے ہو؟ نبی نے صحابہ کو سمجھایا, صحابہ نے تابعین کو سمجھایا, تابعین نے تبع تابعین کو سمجھایا, تبع تابعین نے اپنے شاگردوں کو, تو کنٹینیو یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ آج تک چلا رہا ہے. اگر کوئی کہتا ہے تفسیر میں میرا کوئی استاذ نہیں ہے تو اس کی تفسیر معتبر نہیں ہے. ہاں, اسی سلسلے میں دو نمبر لوگ بھی آتے رہے اور ایک نمبر بھی آتے رہے, تو دو نمبروں سے بچ کے ایک نمبر کو جنہوں نے فالو کرتے رہے وہ صحیح تفسیر ہے ان کے پاس, جنہوں نے دو نمبروں کو فالو کیا وہ بھی گمراہ ہوئے, اور جنہوں نے کسی کو بھی فالو نہیں کیا, کہا کہ ہم خود سمجھیں گے, وہ بھی گمراہ ہو گئے. میں ایک مثال دیتا ہوں نا ڈاکٹر کی, آپ نے علاج خود سے کرنا شروع کیا تو بھی برباد, غلط ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو بھی برباد, صحیح ڈاکٹر کے پاس گئے تو پھر کیا ہوگئے؟ کامیاب ہو گئے. تو جو نبی کے سلسلے سے ڈسکنیکٹ ہوگا نا اور وہ کہے گا کہ میرا کوئی استاذ نہیں ہے, یا استاذ تو ہے لیکن اس استاذ کا کوئی استاذ نہیں ہے, یا استاذ کا استاذ تو ہے آگے استاذ نہیں ہے, کہیں بھی یہ سلسلہ ڈسکنیکٹ ہوا تو سمجھو کہ گمراہی شروع. یہ معتبر علم نہیں ہے. معتبر علم جو صدیوں سے تواتر کے ساتھ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے. تو یہ ہے, یہ میں بہت اہم ٹاپک آج بیان کر رہا ہوں, اس کو کھوپڑی شریف میں بٹھا لیں اچھی طریقے سے. یعلمہم الکتاب, نبی کا کام یتلو علیہم آیاتہ, تلاوت کر کے سنانا. پھر وہ تلاوت جب صحابہ نے سنی تو صحابہ نے آگے وہی تجوید وہی تلاوت تابعین کو پڑھائی کہ نہیں پڑھائی؟ آپ کو پتہ ہے قرآن جو ہم پڑھتے ہیں نا, یہ بھی اخپل طریقے سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جو لکھتے ہیں اخپل طریقے سے لکھنے کی بھی اجازت نہیں. اخپل سمجھتے ہو؟ ابے پشتو میں کہتے ہیں اپنے طریقے سے, کہتے ہیں اخپل اسٹائل دے, زما پشتو والے بولتے ہیں زما اخپل اسٹائل دے, ورورا انڈس کرولا استا ورورا, کوئٹہ میں مشہور تھا انڈس کرولا ہے, اگر وہ کہہ نہیں ہے کسی کام انڈس کرولا کوئٹہ میں بڑی مشہور گاڑی تھی. تو اب میری بات سمجھو, یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں نا, عرب اپنے طور پہ تھوڑی پڑھ سکتے ہیں. کسی سعودی کو دیکھا اپنے عالم کو کہ میں چونکہ میری مدر لینگویج عربی ہے لہذا مجھے قرآن, تجوید تفسیر کی بات نہیں, پہلا مرحلہ کیا ہے پڑھنا, خود سے نہیں پڑھ سکتے بلکہ اس کا کوئی قاری استاذ ہوگا, اس استاذ کا کوئی استاذ. سات مشہور قاری ہیں جن سے متواتر قراتے ہیں, ہم جو قرات پڑھتے ہیں روایت حفص عن عاصم, یہ حفص جو بڑے قاری تھے کوفہ کے, جو جو عاصم سے روایت کرتے ہیں, یہ وہ والی قراءت ہے جو عبداللہ بن مسعود نے کیسے پڑھا ہے قرآن کو, کس آیت کو کیسے پڑھا ہے انہوں نے. اس میں آپ کو یہ پرمیشن نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے, اب جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ مجرحا و مرساہا, حالانکہ نارمل تو پڑھنا چاہیے قاعدے کے تحت بسم اللہ مجریہا, رے تو نہیں ہے نا کوئی لفظ عربی میں, لیکن چونکہ قاری نے جو نبی سے سنا تو مجری کے بجائے مجرے پڑھا ہے, تو اسی قاری نے آگے نقل کیا مجرے, اور وہی آج تک چلا آ رہا ہے, بولو مجرحا. پھر نبی نے ایک آیت کو مختلف طریقوں سے پڑھا, واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجرلا وما خلق الذکر والانثی بھی ہے والذکری والانثی بھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بھی پڑھا اور ملک یوم الدین بھی پڑھا. تو آپ اپنی طرف سے نہیں پڑھ سکتے کہ میں مالک یوم الدین یا ملک, بھائی آپ قاریوں سے سن کے, کہ آپ نے اگر اس ایک قاری کی قراءت پہ پڑھنا ہے تو ملک یوم الدین, دوسرے قاری کی قراءت پہ پڑھنا ہے تو مالکی, دونوں قاریوں نے الگ الگ روایت کیا نبی سے, لیکن دونوں نے سنا ہے تو دونوں کا معتبر ہے. وما ہوا علی الغیب بظنین ہے نا تیسرے پارے میں, تو اس کو ایسے بھی پڑھا جاتا ہے وما ہوا علی الغیب بظنین ملا کے پڑھا جاتا ہے. اور کتابت میں بھی ایسا ہی ہے, نبی نے جیسے لکھوا دیا قرآن اپنی نگاہوں کے سامنے, جو جس طرح کاتب وحی نے لکھ دیا, اب اس لکھے ہوئے کو بھی آپ اخپل طریقے سے نہیں لکھ سکتے. اس کی مثال جیسے اولائکہ کا لفظ ہے, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسلام سینہ بسینہ چلا ہے, اسلام میں بابے بیچ میں آئیں گے, بابا لیس اسلام ہو ہی نہیں سکتا. ہاں کچھ اچھے بابے آئیں گے کچھ برے بابے آئیں گے, تو بالکل بابا لیس نہیں ہو سکتے. سند متصل کے ساتھ بابا چاہیے آپ کو, آپ کا بابا کون, اس کا بابا کون, اس کا بابا کون, اس کا بابا کون, یہ سند متصل کے ساتھ, متصل سمجھتے ہو, 1400 سال میں ایک دفعہ بھی یہ ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے سلسلہ. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں, یہ جو اولائکہ کا لفظ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا الف کے بعد واؤ لکھا ہوتا ہے, اولائکہ میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اور لام پہ کھڑا زبر ہوتا ہے, لام کے بعد الف, بولو نہیں ہوتا. حالانکہ جو پروننسیشن ہے اس میں تو الف کے بعد واؤ پڑھا ہی نہیں جا رہا, آپ نے کہا پڑھا تو جا نہیں رہا ہے, تو خام خامے پین کی سیاہی ضائع ہو رہی ہے, الف کے اوپر پیش ڈال دوں, واؤ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا اس کی اجازت ہوگی آپ کو؟ قطعا نہیں. آپ ویسے عربی میں کوئی خط لکھ رہے ہو تو وہ واؤ نہ لکھو, آپ قرآن لکھ رہے ہو تو آپ کو لکھنا پڑے گا. کیوں؟ کاتب وحی سے جو کتابت منقول ہے, جو ریٹن فارم میں قرآن آیا ہے, ریٹن فارم میں اسی طرح آیا ہے, اس میں آپ کو چینجنگ کی اجازت نہیں ہے. تیسویں پارے میں ہے نا, اقرا بسم ربک الذی خلق, اس میں آخری آیت سے پہلے کیا ہے, لئن لم ینتہی لنسفعن بالناصیہ ہے کہ نہیں؟ اب دیکھو یہ جو لفظ ہے نا لنسفعن, اس کا مطلب ہے ہم اس کو پیشانی سے پکڑیں گے. جو عربی گرامر میرے لیکچر جنہوں نے تفسیر کے سنے ہیں ان کو یہ سمجھنے میں مزہ آئے گا. لنسفعن یہ لام تاکید کے لیے, نسفعن کا معنی پکڑیں گے ہم, بن ناصیہ پیشانی سے, اللہ نافرمان کو دھمکی دینا ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے. اب نسفعن میں اصل میں ہونا چاہیے عین نون زبر عن, کیا ہونا چاہیے؟ بولتا کیوں نہیں, عین نون زبر عن ہونا چاہیے, قاعدے اور ضابطے کی روح سے ایسا ہونا چاہیے. جیسے میں کہتا ہوں لنظری بن, میں ضرور بھی ضرور ماروں گا, تو لنظری بن کے بعد با کے بعد الف کبھی بھی نہیں آتا, ہمیشہ کیا آتا ہے؟ الف آئے گا اسم میں, ناؤن میں, سینٹینس اور فیل میں نہیں آتا. لنسفعن تو سینٹینس ہے نا, میں پکڑوں گا, آئی ول ڈو, میں یہ کام کروں گا, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ تو سینٹینس ہے, تو سینٹینس میں الف نہیں آتا, جس کو ہم دو زبر کہتے ہیں. جیسے کتابن لکھوں گا نا میں, کتابن, کتابن میں کیا لکھوں گا؟ با کے بعد الف ڈال دوں گا, با نون زبر بن نہیں لکھوں گا. لیکن جو فیل ہے نا سینٹینس, اس میں الف نہیں ہوتا, یعنی یہ نون 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 باقاعدہ لکھا جاتا ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں اس جگہ یہ قاعدہ ٹوٹ رہا ہے یہ فیل, لیکن لنسفعن میں عین کے بعد نون کے بجائے کیا ہے؟ الف. اب کسی بھی عربی دان سے پوچھیں جس کو عربی گرامر آتی ہو، عربی رسم الخط، وہ کہے گا رسم الخط کے لحاظ سے یہ بالکل غلط ہے، یہ غلط ہے. لیکن کوئی اس غلط کو صحیح کر سکتا ہے؟ کیوں، یہ غلط ہی صحیح ہے. صحیح ہے نا. وجہ کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کاتب وحی سے کہا لکھو تو لنصفعن، کیونکہ الف کو بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے اور نون کو بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے، تو کاتب وحی نے اس کا خیال نہیں کیا. انہوں نے دیکھا کہ جو آواز آ رہی ہے نا، جو سننے میں آ رہا ہے، سننے میں وہی آ رہا ہے جو عین دو زبر عن والا آواز ہوتی ہے، تو انہوں نے الف لگا دی آگے. یہ اللہ نے کروایا کاتب وحی سے. کیوں کروایا؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ جو نبی کے وقت میں ہو گیا نا، نون کے بجائے الف ڈل گیا، قیامت تک اس الف کو کوئی گرامر کے قاعدہ استعمال کر کے چینج نہیں کر سکا، تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے. ایسی خاندانی حفاظت دنیا میں کسی کتاب کی نہیں ہوئی ہے، کہ کتابت کی بھی حفاظت کی اللہ نے. یہ جو ہم کہتے ہیں سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے، نہیں لکھی ہوئی نا بسم اللہ، اس کی بہت ساری حکمتیں بیان کی جاتی ہیں. اس میں جنگ و جدال ہے، اس میں جہاد ہے، اس میں یہ ہے، یہ سب حکمتیں ہیں. اصل وجہ یہ نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ سورہ انفال نازل ہوئی، اس کے بعد سورہ توبہ نبی نے حکم دیا کہ سورہ انفال کے بعد رکھو، صحابی کو حکم دیا. تو صحابی کہتے ہیں، صحابی کنفیوز تھے کہ یہ سورہ انفال ہی کا حصہ ہے یا الگ سورت ہے. صحابی اس وقت تک ان کو کنفرم نہیں تھا، تو انہوں نے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی کہ بھائی اگر الگ صورت ہوگی تو لکھ دوں گا، الگ صورت نہیں ہے تو اسی کا حصہ ہے. بس وہ نہیں لکھی، تو آج تک بولو نہیں، کسی کی ہمت نہیں کہ بھائی یہ تو الگ صورت ہے اب تو لکھ دو. نا 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 نا، جو مرتب ہو گیا اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. اصل وجہ یہ ہے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھی. وہ تو ہم پھر بعد میں حکمتیں بیان کرتے ہیں، ایکچولی وہ ایسا ہوا تھا، اس میں چونکہ جنگ ہے، وہ ایکچولی ہوا یہ تھا اصل میں، ٹھیک ہے نا، کہ صحابی کنفیوز تھے کہ یہ نئی صورت ہے یا وہی والی صورت کا حصہ ہے، تو کنفیوژن میں انہوں نے نہیں لکھی، اب نہیں لکھی. تو جیسے یتلو علیہم آیاتہ فہی تملا علیہ بکرتا واصیلا، سورہ فرقان میں، کہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ ان کے سامنے لکھ کے ان کو پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں. قرآن جو ہے نا نبی کے سامنے لکھا جاتا تھا نا، جب نازل ہوتا تھا تو نبی تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جب نازل ہوتا کاتب وحی لکھتے، پھر ہم کہتے ہیں نا املا کرانا، یاد ہے بچپن میں اسکولوں میں، اب تو ساری ٹرمز ہی چینج ہو گئی ہیں، اب تو املا کراتے بھی نہیں، اب تو سوائے کیلے کے رنگ بھرنے اور سیب کے رنگ بھرنے کے علاوہ بچوں کا ایسا برباد ہو رہے ہیں نا بچے اسکول میں. بچوں کو اسکول سے نکال کے گھر میں پڑھاؤ، کامیاب ہو. میرے جو بھانجے کی شادی ہوئی ہے نا ابھی 21 سال میں، ہونی تو 18 سال میں تھی، 3 سال لڑکی والوں کی وجہ سے لیٹ ہوا ہے. وہ آج مجھے کوئی کہہ رہا ہے یار آپ لوگ اتنی کم عمری میں 21 سال میں بچوں کی شادیاں کر دیتے ہو، کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بہت لیٹ ہو رہی ہے، بولو میں توبہ استغفار کر رہا ہوں اس پر، جس کی بےچارے کی 18 میں ہونی چاہیے تھی، دو دانت کا ہو گیا تھا 18 میں. وہ ہم اللہ پہ اس معاملے میں توکل کرنے والے، اللہ توفیق دیتا ہے ہمیں توکل کی. یہ آپ لوگوں کے مسائل ہیں، بچہ اتنا کمائے گا، یہ اللہ کا شکر ہے اس عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا لیا، تبھی اللہ نے ہمیں خوشیاں بھی دی ہیں، ہمیں اولادیں بھی دی ہیں، پوتے بھی دیے، نواسے بھی دیے. پوتے تو ابھی میرے نہیں ہوئے، نواسے ہو گئے، نواسی ہو گئی ہے، پوتے بھی ابھی بچے میرے وہ ہے نا، وہ چھوٹا ہے نا، کیا کریں، وہ بڑھ ہی نہیں رہا، وہ بڑا ہی نہیں ہو رہا، ابھی 11 سال کا ہوا ہے، تو اس کو کس طرح سے میں 18 پہ لے کے جاؤں؟ تو اللہ پہ اعتماد کرو شادی بیاہ کے معاملے میں، بچوں کے معاملے میں، اللہ خوشیاں دے گا، چہروں پہ رونق دے گا، سمجھتے ہو؟ اور اس معاملے میں یہ کام دنیا میں لوگوں کے تانے سنے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اپنی بچی کی شادی کرو گے تو صلواتیں سننے کو ملیں گی، ابھی بچی اتنی بالغ ہوئی تھی شادی کر دی. بیٹے کی کرو گے لوگ تانے دیں گے، اپنی کرو گے تو تانے ملیں گے، لیکن کسی کی مت سنو، دے دنادن کرتے جاؤ. اور یہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا 30 کروڑ آبادی ہو جائے گی، 40 کروڑ بھی ہو جائے نا، پاکستان میں نہ اسپیس کی کمی ہے نہ وسائل کی کمی ہے. یہ جو پاکستان بچا ہوا ہے آبادی کی وجہ سے بچا ہوا ہے، یہ اتنے لوگ ہمارے بیرون ملک جا کے ڈالر بھیج رہے ہیں، یہ آبادی نہ ہوتی تو مر چکے ہوتے ہم لوگ، سمجھتے ہو؟ آبادی ہوگی تو کھانے کو کچھ تھوڑا سا مل جائے گا. ابھی یہ میرے جو اتنے سارے بچے ماشاء اللہ، اللہ برکت دے، تو یہ بڑے بھی تو ہوں گے، کیا خیال ہے؟ اتنے رہیں گے پھر مسئلہ ہے کہ کھلائے جا رہے ہو، کما رہے نہیں ہو، تو یہ بھی تو بڑے ہو کر ہاتھ بٹائیں گے نا، یہ بھی تو بڑے ہو کر ہاتھ بٹاتے چلے جائیں گے. تو یہ فیملی پلاننگ والے یہ بتاتے ہیں کہ بچہ کھاتا ہے، یہ نہیں بتاتے کہ دو ہاتھ اور دو ٹانگے لے کے پیدا ہوتا ہے، کمانے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اس میں. तो पाकिस्तान में स्पेस, एक बलूचिस्तान ही इतना बड़ा है ना, पूरी आबादी बड़े आराम से बलूचिस्तान अकेले में आ सकती है। ये एक डॉक्टर साहब बयान कर रहे 30 करोड़ की आबादी होने वाली है, 40 करोड़ की, तो लोग देखो करोड़ करोड़ की आबादी। ओ भाई स्पेस कितनी है, पाकिस्तान नक्शे में ना देखा करो, नक्शे में तो इतना सा है। लोग देख रहे होते यार इतना सा नक्शे में 30 करोड़ कहां खपाएंगे। अबे जब चल के देखोगे पता चलेगा भाई इतना सा नहीं है। यहां से हैदराबाद जाओ खाली, हैदराबाद तक की जमीन खाली, बरसाती मेंढकों की तरह भी बच्चे पैदा करोगे ना तो हैदराबाद तक भी भरने वाला नहीं है। इतनी ये पागल है, ये उनके नजरियात से डसे हुए लोग हैं। इनकी जो गुलाम कौम होती है ना तो वो गुलामों की तरह सोचती है, उसकी अपनी कोई थिंकिंग नहीं होती। हम शुक्र है इस्लाम को फॉलो करते हैं, अमली तौर पर जितना हम कोशिश करते हैं, मैं नहीं दावा कर रहा कोई 100%, कोशिश तो 100% ही की होती है ना, नजरियात तो ठीक है ना हमारे, इसलिए अल्लाह ने हमें इन अजाबों से बचाया। तो अल्लाह तो है ही नहीं इनकी डिक्शनरी में, पास सब कुछ है बेचारों के पास, खुशी नहीं है क्योंकि हर वक्त जेब 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 पैसा जेब पैसा। बच्चा पैदा हो गया तो एक्चुअली करके स्कूलों की फीसें, फलाने फीसें, डिमकानी फीसें, और मैं दो दो बच्चे वालों की अजाब और टेंशन देख रहा हूं। इतने महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ा के कहते हैं यार हमने लाखों रुपए खर्च करके अपना बागी बना दिया इनको, तो पैसे या पढ़ाओ नहीं है, टमाटर बेचेगा खत्म, ये कोई मसला नहीं है। मरेगा वो भी जो करोड़ों रुपए कमाता है, मरेगा वो भी जो टमाटर बेचता है। आज एक बेरोजगार आया, कर रहे को कुछ काम ही नहीं है। मैंने कहा मैं बेहतरीन काम है मेरे पास, आपको मैं बेहतरीन काम बताता हूँ। कह रहे बेरोजगारी, करने को कुछ नहीं है, ये हो रहा है। मैंने कहा भाई तू मेरे पास आया ना, क्रेडिट दिलाता हूँ, टमाटर लगा, इस पे मौत आ रही है। पहुंचना कहां चाहते हैं, अमेजोन के जरिए एकदम वहां पहुंचना चाहते हैं। तो एक बंदा पहुंच गया और उसका भी दिमाग खराब हो गया, ठीक है ना, सठिया गया है वो भी, ठीक है। तो तुम भी वहां पहुंचोगे शुक्र करो नहीं पहुंचे वहां पे, वरना उसी जैसे हो जाओगे। 100 दफा पना मांगा करो, अल्लाह इस जैसा ना बना देना मुझे। देखे नहीं हर दूसरे बयान में लगता है कुछ दिमागी क्या है, मछली दिखा रहा है, ये मछली देखो, ये मेरी दाल देखो मैं खा रहा हूं, गरीब हो, ठीक है ना। ये इसकी अलामत है, एंजाइटी के पेशेंट ऐसे होते हैं, पता है आपको, नॉर्मल आदमी कभी भी ऐसा नहीं होता। तो अल्लाह पे क्या करो मेरे भाई, तवक्कुल करो, खुश रहोगे इससे। और दुनिया वैसे भी मुसाफिर खाना है। कल एक बंदा आया मेरे पास के 5 महीने का हमल है, बच्चा माजूर है, डॉक्टरों ने कहा है गिरा दो इसको, तो बच्चा माजूर है सारी जिंदगी। मैंने कहा माजूर बच्चा पैदा हो तो टेंशन से बचने के लिए कत्ल कर दोगे उसको, है भाई, कोई नाबीना है, हाथ पांव टेढ़े हैं, आप कहो कि सारी जिंदगी बेचारा कैसे सरवाइव करेगा, तो उड़ा दो इसको, ये जायज है। तो ऐसे ही जब 4 महीने का बच्चा हो गया, पूरे आजा बन गए, वो तो इंसानी जान है, अब तो जो है सबर करो भाई। कह रहे पूरी जिंदगी कैसे गुजरेगी, मैंने कहा जिंदगी कारून की भी गुजर गई, फिरौन की भी गुजर गई, और मूसा की भी गुजर गई। हजरत मूसा की टेंशनों में गुजरी, फिरौन की अय्याशियों में गुजरी। तो दोनों कहां है, एक आग में और एक का कुरान में जिक्र है, वो जन्नत के बागों में। कैसे अल्लाह ने मूसा को जिक्र किया ना कुरान में। तो मैंने कहा भाई जो पैदा हो, पहले तो दुआ करते हैं अल्लाह सेहतमंद बच्चा दे। बाज दफा ऐसी रिपोर्टें होती है माजूर है लेकिन सेहतमंद बच्चा पैदा हो जाता है, दिल से दुआ है, लेकिन जो भी हो अल्लाह की तकदीर समझ के राजी रहो इस पे। यही तुम्हारी यही आजमाइश है, हो सकता है अल्लाह इसी पे बख्शे तुम्हें, तुम्हारी खताओं को माफ कर दे अल्लाह ताला इस पे। तो 4 महीने के बाद बच्चा नहीं गिरा सकते, समझ रहे हो। अच्छा खैर, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि यतलु अलैहिम आयाती, नबी ने जैसे पढ़ के सुनाया, आपको उसमें अपनी तरफ से चेंजिंग की इजाजत नहीं है। अब कोई कहे मैंने खुद से कुरान पढ़ना सीखा है, खुद से कोई बोलो नहीं सीख सकते, क्योंकि खास तरह से ही आपको पढ़ना पड़ेगा जो नबी का अंदाज था। इसी तरह युअल्लिमुहुम, कुरान कहता है सिखाएंगे भी कुरान नबी, सिखाएंगे भी कौन, यानी उसका मफहूम भी नबी बताएंगे। तीसरे नंबर पे युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, हिकमत की बातें भी सिखाएंगे, जिनको हदीस कहा जाता है वो भी पढ़ाएंगे नहीं बल्कि सिखाएंगे। सिखाना अलग है, पढ़ाना, पढ़ाने का मतलब पता है क्या होता है, हदीस की किताब पकड़ा दी पढ़ते रहो बैठ के, सिखाना ये नहीं होता। सिखाना होता है प्रैक्टिकल लाइफ में उसको लाना, सिखाना। युअल्लिम के अल्फाज है तालीम, तालीम वो तालीम अलग चीज है। तभी कभी एक हदीस को देख के कभी फैसला नहीं किया जाता, क्योंकि तालीम का मतलब होता है एक बात की एक्सप्लेनेशन आगे आ रही है, उसकी एक्सप्लेनेशन उधर आ रही है, तभी सारी हदीसों को सामने रखकर हदीस का मतलब बयान किया जाता है। कभी भी एक हदीस को देख के फैसला नहीं किया जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते? आज बहुत से स्कॉलर हदीस का रेफरेंस दिया, लोग कह रहे भाई ये तो हदीस है, ये भी हदीस है, इसके अलावा भी बहुत सारी हदीस है, उनको मिला के देखो कुरान क्या कहता है कि जो कत्ल करेगा हमेशा जहन्नम में जलेगा। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात में किसी का भी अकीदा नहीं है कि कातिल अगर मुसलमान है तो हमेशा जहन्नम में रहेगा वो, बल्कि एक दिन गुनाह की सजा खाने के बाद निकल आएगा। हालांकि कुरान के अल्फाज ऐसे नहीं है। वजह क्या है? कुरान में दूसरे मकामात पर उसकी तशरीह है, तो इस तरह हदीसों में भी है। तो ये जो होता है ना कि चंद चीजें देख के फतवा देना शुरू कर देना, ये जहालत की बात है। और गैर मुस्लिम भी बहुत सारे एक हदीस देख के एतराज कर रहे होते हैं, देखो नबी ने ये फरमाया। मैं अक्सर एक हदीस पेश करता हूं, हजरत अबू जर नबी के पास आए, या रसूल अल्लाह के अगर मुसलमान कोई जिना करे और चोरी करे तो क्या होगा? नबी ने फरमाया मुसलमान जन्नत में जाएगा। अबू जर ने फरमाया वह इन जना व इन सरक, जिना करे चोरी करे फिर भी। आपने फरमाया वह इन जना वो इन सर, जिना करेगा चोरी करेगा फिर भी कहां जाएगा? जन्नत में। मुत्तफकुन अलैह हदीस है। फिर हजरत अबू जर ने पूछा व इन जना व इन सर, अगरचे जिना करे अगरचे चोरी करे। आपने फिर फरमाया व इन जना व इन सर, जिना करे चोरी करे जाएगा कहां? जन्नत में। फिर हजरत अबू जर ने फरमाया या रसूल अल्लाह व इन जना व इन सर, वो हैरान हो रहे हैं ना इतने बड़े बड़े गुनाह करके भी कहां जा रहे हैं? जन्नत में जा रहे हैं भाई। फिर उन्होंने फरमाया या रसूल अल्लाह व इन जना व इन सरक, अगरचे जिना करे अगरचे चोरी करे। आपने तीसरी दफा और सख्ती से फरमाया, फरमाया व इन जना व इन सरक व इर रगीमा अनफू अबी जर, अगरचे जिना करे चोरी करे फिर भी जन्नत में जाएगा, अगरचे अबू जर की नाक खाक आलूदा हो जाए, अबू जर की नाक मिट्टी में मिल जाए, यानी वो रुसवा हो जाए, उसको अच्छा नहीं लग रहा जन्नत में जाना इसका, मगर जाएगा कहां? जन्नत में जाएगा। अब एक एथियस ने ये हदीस लेके इस्लाम पे एतराज किया, देखो ये है इस्लाम जो लोगों को जिना सिखा रहा है, जो लोगों को चोरियां सिखा रहा है, और कह रहे बस मुसलमान हो जाओ डायरेक्ट कहां जाना है? जन्नत में। तो ये जुल्म और ज्यादती है, किसी की एक बात को लेके उस पर फौरन फैसला कर देना सियाक व सबाक से हट के, ये ज्यादती है या नहीं है? जो उलमा की किताबों के साथ आजकल हो रहा है, जो लोग किताबों में कीड़े निकालते हैं ना, ये वो भी यही कर रहे होते हैं। जिन लोगों की सारी जिंदगी कब्र परस्ती के खिलाफ गुजरी है उनको कब्र परस्त कहा जा रहा है, जिनकी सारी जिंदगी तौहीद के प्रचार पे गुजरी, तौहीद के प्रचार, उनकी दो तीन इबारतें लेके उनको मुशरिक करार दिया जा रहा है। तो ये वही काम है जो मुल्हिद लोग करते हैं। तो इसका क्या जवाब है भाई? सामने अबू जर थे। अगर हदीस का ये मतलब होता ना कि जिना और चोरी की इजाजत मिल रही है, तो अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु तो बड़े सूफी किस्म के सहाबी थे, वो तो गुनाह से आखिरी दम तक इतना दूर रहे हैं। नबी को पता था कि ये कभी भी जिना और चोरी की जुर्रत नहीं करेंगे। हदीस में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन दीगर हदीसें, इस्लाम में जिना की इजाजत होती तो जिना की जितनी सख्त सजा इस्लाम में है किसी और मजहब में है? शादीशुदा जिना करे रजम करने का हुक्म, पत्थरों से मार के हलाक कर दो। कमारा जिना करे चौक पे खड़ा करके सूरह नूर में क्या है, कोड़े मारो 100 कोड़े इसके। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैंने मेराज में देखा कि कुछ नंगे मर्द बरहना औरतें आग में जल रही हैं। जब शोले ऊपर जाते हैं ना तो ये भी ऊपर आते हैं। तो मैंने जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं? फरमाया आपकी उम्मत के जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें। तो मुसलमान जिना करने वाले हैं जिनको आग में जलाया जा रहा है। वमन यफअल ज़ालिका यल्का असामा, कुरान कहता है जो जिना करेगा और चोरी करेगा, जो जिना करेगा अपने जुर्म की सजा, बहुत बड़े जुर्म की सजा मिलेगी उसको क्यामत के दिन। इससे क्या पता चलता है? अबू जर रजी अल्लाह उनका यह नजरिया था कि उसको कभी भी जन्नत में नहीं जाना चाहिए। तो नबी ये फरमा रहे हैं कि सजा खाने के बाद ईमान की बरकत से एक ना एक दिन वो भी जन्नत में जाएगा। अगर जी हदीस में इसका सराहतन जिक्र नहीं है, लेकिन नबी को मालूम है कि सामने वाले भी मेरी बात का मतलब समझते हैं, तभी तो इस बात के बाद हजरत अबू जर ने फिर भी कभी ना जिना किया ना चोरी की। उनको ये इश्काल हो रहा है कि कभी भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, इतना बड़ा मुजरिम है। तो नबी बता रहे हैं कि अगर जिना और चोरी है ये जुर्म है तो ईमान की नेकी भी तो है ना। दुनिया में कितने लोग खुदा के मुनकिर हैं, कितने तौहीद के मुनकिर हैं, कितने रिसालत के मुनकिर हैं। तो ईमान वाला अगर बुराइयां लेके जा रहा है तो कलमा भी तो लेके जा रहा है ना, ये कलमा कोई हल्की चीज है? ये कमाल की बात है कि चोरी को तो वजन दें हम और कलमे की नेकी को नेकी का वजन न दें। इसका मतलब चोरी का वजन कलमे की नेकी से भी ज्यादा है, तो ये तो कलमे की वैल्यू गिर रही है। खोपड़ी शरीफ में बात नहीं आ रही मेरा ख्याल है, आ रही है बात? तो कलमा सबसे क्या है मेरे भाई? वजनी चीज है। अल्लाह को मानना, उसकी तौहीद, ईमान बहुत बड़ी दौलत है। तो ये गुनाहों की सजा मिलेगी जहन्नम में, लेकिन बिल आखिर ईमान का पलड़ा क्या हो जाएगा? भारी। ये ऐसी नेकी है जो इसके गुनाहों को बिल आखिर खा जाएगी। ये मतलब नहीं है, वरना चोरी इस्लाम में अच्छा अमल होता या कोई मसला ही नहीं था, तो चोर का हाथ काटने का हुक्म क्यों होता? इतनी सख्त सजा किसी और मजहब में है? देखो जब इंसान उल्टा सोचता है ना तो उल्टा ही सोचता है, अच्छा सोचता है तो अच्छा सोचता है। हमारे एक रिलेटिव थे, जब भी मैं चोर का हाथ काटने का जिक्र करता हूँ मुझे दो वाकया याद आते हैं। एक अफगानिस्तान में जब तालिबान ने ऐलान किया कि चोर का हाथ काटा जाएगा, पुराने वक्तों में ना, जब पहले दफा पहली जब हुकूमत आई थी, तो हमारे अखबारों में कार्टून आए, हमारे सियासी लीडर ने बयान दिया कि हम भी चोर का हाथ काटेंगे। अगले दिन उन्हीं का हाथ काट के लोगों ने लगाया हुआ था कि अगर पाकिस्तान में चोरों के हाथ कटना शुरू हो गए तो काटने वालों के हाथ सबसे पहले कटने का खतरा है, इसलिए पाकिस्तान में ये सजा नाफिज नहीं हो सकती। तो दूसरा ये कि वो हमारे एक रिलेटिव है, बड़े ब्रॉड माइंडेड किस्म के, उनको बहुत इश्काल होता था कि यार ये इस्लाम ने चोर का हाथ क्यों काटने को, कोड़े वोड़े लगा देते, थप्पड़ छप्पड़ लगा देते, उसके जेल में डाल देते, 10 साल नहीं 20 साल जेल डाल दो, हाथ तो गया बेचारे का यार, ठीक है ना। उनको बड़ा इश्काल होता था कि इतनी सख्त सजा क्यों है, ये क्या है? मनफी सोच। लेकिन जब उनको थोड़ा स्टडी की, इस्लाम के और बहुत सारे अहकाम पढ़े, मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने कहा यार मेरे जहन में एक बात आई है कि मैं इसको नेगेटिव लेके क्यों जा रहा हूं, मैं ये भी तो सोच सकता हूं कि इस्लाम जुर्म से इतनी नफरत करता है कि किसी कीमत पे भी जमीन पे जराइम को बर्दाश्त नहीं करता। देखो 2 मिनट में नेगेटिव पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया, कि यार इसको हम पॉजिटिव भी तो ले जा सकते हैं। इस्लाम कहता है भाई जुर्म देखना ही नहीं, जमीन पे रहना ही नहीं है, काटो साले का हाथ, तो कमबख्त चोरी करने के काबिल बचे ही नहीं तुम्हारा। तो ये भी तो हो सकता है, डाकू की सजा जितनी इस्लाम में है इतनी दुनिया में किसी मजहब में नहीं है। हर सजा इस्लाम में सख्त नहीं है, ये जहन में रखो, बहुत सी सजाएं नरम भी हैं, चंद कोड़े मार के छोड़ दो बस। लेकिन कुछ जराइम ऐसे जिनकी सजा बहुत ही सख्त है, बहुत ज्यादा सख्त सजा है उनकी। उनमें एक डकैती है कि आपने गन पॉइंट पे दिन दहाड़े किसी को लूटा, तो कुरान क्या कहता है? उसको चौक पे लटकाओ और सूली दो उसको, जैसा गर्दन नहीं उड़ाई जाएगी उसकी, बर्छा सीने पे मार के घुमाया जाएगा उसके, हाथ पांव काटे जाएंगे, एक तरफ से हाथ एक तरफ से पांव काट के चौक पे लटकाओ। इस्लाम में बंद कमरे में फांसी का कोई तसव्वुर बोलो नहीं है, बंद कमरे में नहीं, इस्लाम में चौक पे होता है, जो भी होता है मार्केट में होगा, ताकि मार्केट में जो लोग हैं उनको इबरत हासिल हो, उनको पता हो कि ये अंजाम होने वाला है, फांसी घाट में जल्लाद जाने और वो जिस पे गुजर रही है वो जाने, लोगों को तो लाश मिल जाती है, लोग समझते हैं जैसे सबका इन्ना लिल्ला होता है इसका भी इन्ना लिल्ला हो गया है। इसलिए इस्लाम में चौक पे जो होगा क्या होगा भाई? चौक पे। तो डाकू की सजा क्या है भाई? एक हाथ बायां पांव काट के चौक पे लटका दो। अफगानिस्तान में होता है, अब भी होता है, डाकू जो हो ना वो लटका देते हैं उसको। तो क्यों इतनी सख्त सजा रखी है? इसलिए कि डकैती कोई हल्की चीज थोड़ी है भाई। स्वीडन से शादीशुदा जोड़ा आया था यहां पे, जवान लड़का, अपनी वाइफ, यंग वाइफ थी, बिल्कुल नई नई शादी थी, एक छोटा सा बच्चा था उनका, पाकिस्तानी थे, यूपी पे डाकू ने औरत के सामने शोहर को गोली मार दी। तो दिल नहीं चाहता कि इसको चौक पे लटकना चाहिए? क्या उनकी जिंदगियों में क्या क्या रह गया बताओ यार? बच्ची अपने बाप को तड़पते हुए देख रही हो, लाश को, पूरी जिंदगी के लिए स्ट्रेस और डिप्रेशन में चली गई कि नहीं? वो हर वक्त ये मंजर याद आएगा, एक औरत अपने जवान शोहर को इस तरह मरते हुए देखे। उन डाकुओं के साथ हमारे यहां क्या होता है? उनको पुलिस, फिर कोर्ट, उसके बाद वो तजर्बा हो जाता है उनको कि इस दफा ये गलती नहीं करनी। तो मैं जल्दी से बात को समेटूं, अल्लाह ने फरमाया यतलु अलैहिम आयातिही, तिलावत करेंगे, वयुअल्लिमुहुम और सिखाएंगे, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और हिकमत की बातें भी सिखाएंगे। आगे बड़ी अहमियत जो जिस पर मैंने बयान करना था, वयुज़कीहिम, और इनका तज़किया भी करेंगे। तज़किया زکات سے نکلتا ہے، پاکیزگی کو کہتے ہیں. تزکیہ کا معنی پاک کر دینا. پاکی کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ ناپاکی سے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ بیگم کو بولتے ہیں، آج کل تو کوئی نہیں بولتا، یعنی بولنا چاہیے کہ بیگم یہ کپڑے پاک کر دو واشنگ مشین میں، یہی ہوتا ہے نا. یا ماسی کو بولتے ہیں جو گھر میں کام کرنے آتی ہے، یہ کیا کر دو بھائی، پاک کر دو. تو وہ کہے گی کہاں سے ناپاک ہے، یہی کہے گی نا، تاکہ میں اس جگہ دھو لوں. ابے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آپ کہتے ہیں بھائی یہ فرش پاک کر دو، اگلا کہے گا بھائی ناپاک ہی کہاں ہے، تو میں وہ جگہ ہٹا دیتا ہوں تو فرش کیا ہو جائے گا. تو پاک کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں ناپاکی کو زائل کر دینا، اٹ از کالڈ پاکی. ایسا ہی ہے نا. تو اللہ نے نبی کا منصب بتایا کہ نبی قرآن پڑھ کے بھی سنائیں گے، حدیث بھی، دونوں چیزیں سمجھائیں گے بھی، اور تیسرا کام بھی کریں گے، تمہیں پاک بھی کریں گے. یہاں پاک کا مطلب کیا ہے؟ گندگی سے پاک کریں گے تمہیں. دیر آر ٹو ٹائپس آف گندگیز. گندگیز کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، ایک ظاہری گندگی ناپاکی اور ایک باطنی گندگی. بلکہ اس سے بھی پہلے، ایک ظاہری گندگی، ایک معنوی گندگی. معنوی گندگی کہتے ہیں جو نظر نہیں آتی، محسوس ہوتی ہے. اب ظاہری گندگی کیا ہے؟ یہی جو گندگی ہوتی ہے، واش روم گئے تو پانی کا استعمال اسلام نے سکھایا، اور اسلام نے کہا کہ یہ خنزیر مت کھاؤ، کتے بلی انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں. یہ ظاہری گندگی ہے نا. خون اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناپاک. اس بارے میں بھی غیر مسلموں کے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے، رہنمائی نہیں ہے. بس انہوں نے اتنی صفائی کا اہتمام کیا کہ جراثیم نہ پھیلیں، بس. پھر یہ جو ظاہری گندگی ہے، اس میں بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نجاست حقیقی، ایک حکمی. حکمی کا مطلب ہے جیسے غسل فرض ہو گیا آپ کے اوپر، اس میں بھی آپ گندے ہو جاتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے. اس میں بھی اسلام نے حکم دیا غسل کرو آپ. غیر مسلموں کے پاس اس کے بھی احکام. انگریز پہ غسل فرض ہوتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ ویسے ہی جو دل چاہے گا نہائے گا، نہیں وہ تو ساری زندگی 10 بچے بھی ہو جائیں نہیں نہائے گا. وہ کہتے ہیں نیٹ کلین، بس ان کا وہ، باقی حساب کتاب نہیں. اس میں بغلوں کے بال صاف کرنا، زیر ناپ بال صاف، یہ ساری چیزیں ہمیں ظاہری گندگیوں سے کیا کرتی ہیں؟ بچاتی. یہ بھی تزکیہ ہے. اگر اس کی بھی ٹریننگ نہ ہونا تو یہ چیز بھی کتابوں سے نہیں آتی. یہ چیز بھی کوئی نہ کوئی آپ کا مینٹور ہوتا ہے. آپ کے ماں باپ آپ کو بچپن سے نہانا دھونا یہ گندگیاں سکھاتے ہیں، یہی گندگیوں سے بچنا سکھاتے ہیں. آج کل گندگیاں بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس لیے میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا، گندگی سے بچنا سکھاتے ہیں. بات چیزیں غلطی سے صحیح نکل رہی ہوتی ہیں میرے منہ سے، پھر میں غلط کر لیتا ہوں ان کو، ٹھیک ہے نا. تو لیکن نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، سکھا بھی رہے ہیں الحمدللہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیمپر نے ابھی ان ٹینشنوں سے کیا کر دیا ہے؟ آزاد. ونس اپون اے ٹائم مائیں بچوں کو لے کے بیٹھا کرتی تھیں کہ پیشاب کر لے، بھی کر رہی ہوتی تھی نا، تاکہ اس کی آواز سن کے فریکوینسی پیدا ہو جائے گی، اس سے پیشاب کو خود خیال آ جائے گا کہ مجھے اب نکلنا چاہیے. اب تو پیمپر ہے 12-12 گھنٹے پیمپروں کی ڈیوٹی، 12 بھی نہیں، 6-6 گھنٹے پیمپر 4 بدلتے ہیں، شوہر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ابھی ایک آدمی نے بتایا کہ میری بیوی نے پیمپر منگوایا، کہہ رہا خدا کی قسم میرے مہمانوں کا پورے مہینے کا اتنا خرچہ نہیں جتنا میرے بچے کے ہگانے متانے کا خرچہ ہے. حقیقت بتا رہا ہوں، بچے کی ہگائی متائی کھلائی سے زیادہ مہنگی ہے. یعنی کھلانے پہ اتنا خرچ نہیں ہو رہا جتنا آگے، باقی اب مناسب نہیں آگے زیادہ ڈیٹیل میں جانا. تو خیر، تو ظاہری نجاست بھی اور باطنی نجاست بھی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے بتائی ہیں؟ اسلام نے. ہم جو آج تھوڑے بہت صاف ستھرے ہیں، یہ کوئی ہمارے حکمرانوں نے تھوڑی ہمیں، جاپانی اگر صاف ستھرا ہے تو ان کے اسکولوں میں ٹیچروں نے اور ان کی قوم نے متحد ہو کے ایک فیصلہ کیا تھا. ہمارے ہاں کوئی ایسا پروگرام ہوا؟ کمال ہے، پھر بھی ہم نہاتے ہیں یار. ہمارے ہاں تو ایسا کوئی سیٹ اپ ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی ہم نہاتے ہیں. یہ کیوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ یہ ہماری سوسائٹی میں چیز چلی آ رہی ہے. آگے ہم اس کو ترقی دینے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں نا، تنزل کی طرف جا رہے ہیں. خدا کی قسم، اسلام کا صرف کوئی صفائی کا نظام دیکھ لے گا نا، اسلام قبول کر لے گا. صرف صفائی کے 1400 سال پہلے جو صفائی ایک یتیم نے، جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا، جو آج بڑے بڑے دنیا کے ماہرین सौ साल पहले का यूरोप ऐसा नहीं था जैसा अब है। इनकी रिपोर्टें थी मलका, जो रॉयल फैमिलीज की मलकाएं होती थी ना, चार चार साल नहीं नहाती थी वो, ये इन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है। खलीफा उस्मानी है ना, खिलाफत उस्मानी का जो खलीफे होते थे, इनके पास जब फ्रांस की शहजादियां या इनकी मलकाओं के पास आती थी, तो मलका जो खलीफा खिलाफत उस्मानिया में जो मलकाएं हुआ करती थी, वो पहले फ्रांस की जो शहजादियां और मलकाओं को वॉशरूम में ले जाके नहलाया जाता था उनको, कि इनको यहां नहीं आने देना, बदबू आ रही है। इतने मैले थे ये। ये तो बाद में इन लोगों में शूर आया कि तरक्की नहीं कर सकते अगर हम इसी तरह मैले रहे, ऐसे हाल थे इनके। ये तो बाद में इन लोगों में शूर आया है। एक गोरे ने खुद एतराब किया कि हमने नहाना मुसलमानों से सीखा है। तो हमारे जो बादशाह होते थे ना, वो बदबू से मर जाते थे इन लोगों की। ये आते थे तो इनको बड़े होता था कि इनको पहले सर्विस स्टेशन में लेके जाओ, थोड़ा ट्यूनिंग सर्विस करवा के लेकर आओ हमारे पास। मैंने एक किताब अरबी थी उसका तर्जमा किया उर्दू में, एक अरब ने लिखी। उस अरब ने 150-200 साल पुराने लंदन जो है ना, यूके की रॉयल फैमिली के शादी कार्ड जो था ना, उसका वो उसने मजमून शाया किया। कोई निकला होगा तारीखी, होते हैं ना पुराना शादी कार्ड, नहीं होते जैसे बहुत पुराने निकल आते हैं तो वो फिर अजायब घर में रखने के काबिल होते हैं। उस शादी कार्ड में ये लिखा हुआ था, जो रॉयल फैमिली का लंदन का बर्तानिया का, उसमें ये लिखा हुआ था कि जितने हजरात हमारी शादी में आएंगे खाना खाने के लिए, उनसे गुजारिश है कि दस्तरखान से नाक साफ ना करें। नहीं आई बात मेरा ख्याल है समझ में? दस्तरखान से नाक साफ ना करें, और खाने के बाद थूकने के लिए अलग थूक दान दिया जाएगा, प्लेट में ना थूकें। ये किसकी शादी हो रही है? रॉयल फैमिली वालों की। ये तो अब तमीज आई है लोगों में। तो जिन चीजों का मुसलमानों में, और हाथ धोने का तो अब तक ही नहीं है, वो सैनिटाइजर वगैरह इजाद हो गया, वरना इन लोगों ने हाथ धोना था ही नहीं। तो शुक्र है किसी साइंसदान ने सैनिटाइजर इजाद कर लिया कि यार यूं यूं करके खा लो, वरना हाथ ही नहीं धोने का मामूल था। ये तो सिर्फ मुसलमानों में, पानी से सिंजा तो अब तक नहीं आया। हो सकता है इसमें कोई कॉन्फ्रेंस हो, इसको भी अब शुरू कर दें किसी दौर में जाकर। हम तो तरस गए थे यूरोप में भाई, अबे लोटा लोटा इतना वैल्यू थी ना हमारी नजर में, कहीं लोटा नजर आता ना किलो किलो खून बढ़ जाता, लोटा नजर आता। खैर, बहुत सी चीजों में हमसे अच्छे भी हैं, उनकी सड़कें हमसे ज्यादा साफ हैं, कम अज कम ये गटर उबलते हुए नहीं है, सारी चीजें बुरी नहीं है, डिसिप्लिन है, सब कुछ है। लेकिन जो है ना हमारे यहां जो थोड़ा बहुत रह गया है, वो इस्लाम की बरकत से रह गया है। ये तो इस्लाम ना होता तो हमसे ज्यादा पलीद अब दुनिया में कोई होता नहीं। तो खैर, जल्दी से बात को समेटता हूं। तो यूज़की का मतलब क्या हो गया? हर तरह की गंदगी। ये तो हो गई वो गंदगी जिसका आपकी बॉडी से ताल्लुक है। एक है बातनी गंदगी, सॉरी मानवी गंदगी। मानवी का मतलब जो समझ में आती है, महसूस कर सकता है इंसान, हाथ नहीं लगा सकता उस गंदगी, जैसे पेशाब है उस पे हाथ लगाओगे ना आप। ये है आमाल की गंदगी। कौन सी गंदगी? आमाल की। आप झूठ बोलते हो, गंदा अमल है, जिसकी वजह से अल्लाह की नजर में आप गंदे हो जाते हो, चाहे रोजाना शैंपू से नहाते हो आप। कितने लोग नीट क्लीन थ्री पीस सूट टाई में खुशबूएं लगा के घूम रहे हैं, अल्लाह उनको अच्छा नहीं मानता। अल्लाह क्या कहता है? इन नमर मुशरिकून नजसुन। ए ईमान वालो, मुशरिक लोग पलीद हैं। तो नजस होते हैं क्या मुशरिक? हो सकता है कोई मुशरिक डिटॉल से नहाया हुआ हो भाई, मस्जिद में भी मुशरिक आ सकता है, कोई गैर मुस्लिम मस्जिद में आ सकता है ना। हालांकि नापाक आदमी मस्जिद में नहीं आ सकता, लेकिन गैर मुस्लिम आ सकता है। लेकिन सवाल पैदा होता है, कुरान गैर मुस्लिम को मस्जिद में आने की इजाजत भी दे रहा है और उसको जो मुशरिक है उसको नजस भी कह रहा है। तो इससे पता चलता है ये वो वाली नजासत नहीं है जो सूंघने से महसूस हो, ये वो वाली नजासत है कि जब आप आमाल के लिहाज से पाकीजा होते हैं तो फिर आपको शिरकी नजासत महसूस होना शुरू होती है। आपको लगता है ये गंदा अमल है शिर्क करना, बुतों के सामने झुकना, पत्थरों के सामने झुकना, जिना करना, झूठ बोलना, ये सारी अमाल की गंदगियां हैं। तो यूज़कीहिम का मतलब क्या है? नबी की जिम्मेदारी है सहाबाए कराम और लोगों को बुरे अमाल गंदे अमाल से हटा के किसकी तरफ लेकर आना? अच्छे अमाल की तरफ लाना। اب دیکھو اتنا کافی تھا نا کہ قرآن دے دیا, حدیث دے دی, خود ہی آ جاؤ. نہ نہ نہ, انگلی پکڑ کے باقاعدہ لانے والا ہونا چاہیے کوئی, صرف پڑھا دینا کافی نہیں ہے. تو ایک تو اعمال کی گندگی, پھر اعمال کی بھی دو قسمیں, ایک ظاہری اعمال اور ایک باطنی اعمال. ان تمام گندگیوں سے جو پاک ہو جائے تو قرآن و حدیث کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے اس کا تزکیہ ہو گیا. قد افلح من تزکا ہے نا قرآن میں, جس نے تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. تو کیا مطلب, ظاہری اعمال بھی اچھے اور باطنی اعمال بھی اچھے. باطنی اعمال کیا ہیں؟ باطنی اعمال میں گندگیاں جو دل کے اعمال ہیں, حسد, بغض, بلا وجہ کسی کا کینہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو دل کے اندر. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, ذرا سی نفرت ہو گئی تو بڑھائے چلے جاتے ہیں اس کو. یہ دل کی گندگی ہے یا نہیں ہے؟ یہ نظر آتی ہے؟ نظر نہیں آتی. تکبر, پتا ہے مروں گا کل سڑا ہوا ہوں گا, چیڑے کھاڑے ہوں گے, لیکن ایسے گھوم رہا ہوگا جیسے ہم جمع دیگرے نیست, ہم جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. تھوڑا سا پیسہ آ گیا, غریبوں کو ذلیل کرنا شروع کر دیا, منہ موڑ لیا لوگوں سے, تھوڑی سی شہرت مل گئی, ہٹو بچو, ہے صحیح نا, مل ہی نہیں رہے کسی سے, انسلٹ محسوس ہو رہی ہے غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی گندا عمل ہے, گندا, پلیت. سلیم التبع انسان ہوگا اس کو ایسے شخص سے محبت نہیں ہوگی, بلکہ کیا ہوگی؟ نفرت. تواضع اللہ کو پسند ہے, اور عزت دار لوگوں کو بھی کیا پسند ہے؟ تواضع پسند ہے. ماں باپ کے سامنے اکڑ رہا ہے, باپ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے, اور دوستوں میں کہتا ہے کانفیڈنس. یہ کانفیڈنس نہیں ہے بھائی, یہ کیا ہے؟ فرعونیت ہے, تکبر ہے. فرعون کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی تھی حکومت کے بعد. حضرت موسیٰ اس کو دعوت دینے اللہ کی, وہ کہنے لگا مجھے اللہ نظر نہیں آ رہا, میں سیڑھیوں پہ چڑھ کے دیکھوں گا آسمان پہ, نظر آ گیا تو مان لوں گا. تو قرآن نے ایسے موقع پہ کیا کہا؟ واستکبر ہوا وقومہ. فرعون نے تکبر کیا, کیسا مذاق اڑا رہا ہے, سیڑھیوں پہ چڑھ کے دیکھوں گا نظر آ گیا تو. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں احسن کل شئن خلقہ, احسن کل شئن خلقہ, ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا, اور آسمان سے پانی کون برسا رہا ہے, زمین سے نباتات کون پیدا کر رہا ہے. اتنی وضاحت کافی ہے خدا کو سمجھنے کے لیے. فرعون کیا کہہ رہے ہیں؟ سیڑھیاں لگا کے اوپر جاؤں گا. تو جو بھی تمسخر کر رہے ہوتے ہیں نا, مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, اکثر ان میں کیا ہوتا ہے؟ تکبر ہوتا ہے, بڑائی. تو یہ گندگی بھی صاف کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یزکیہم, کون کرے گا بھائی؟ پیغمبر. دنیا کی محبت کے دل میں گٹر ابل رہے ہیں, یہ گندگی تو کامن ہے. تکبر ہر ایک میں نہیں ہوتا, حسد ہر ایک میں نہیں ہے, کینہ ہر ایک میں نہیں ہے, بغض ہر ایک میں نہیں ہے, لیکن یہ والا جو جرم ہے نا, دنیا سے محبت, یہ 99.9% لوگوں میں اگر میں دعویٰ کروں ہے تو شاید میں اس دعوے میں غلط نہیں ہوں. کیوں؟ یہ مسافر خانہ ہے بھائی. آج دو جنازے اکٹھے پڑھائے میں نے, دو میتیں آئی ہوئی ہیں, میتوں پہ میتیں, ہر تھوڑے دن میں کوئی میت, کوئی قبا مسجد میں, کوئی حبیبیہ مسجد میں. اتنے لوگ جتنے پیدا ہو رہے ہیں نا, اتنے ہی مر بھی رہے ہیں. جتنی اطلاعات بچے کی پیدائش کی آتی ہے نا, فلاں کے پیدا ہو گئے, اتنی مرنے والوں کی بھی آ رہے ہیں. اتنے دھڑا دھڑ مر رہے ہیں, کوئی ایکسیڈنٹ سے, کوئی حادثے سے, کوئی ہارٹ اٹیک سے, کوئی شوگر سے, کوئی بیٹھے بیٹھے ویسے ہی بیگم نے کچھ کہہ دیا مر گیا, ٹھیک ہے نا. تو اتنا ایسی بے وفا دنیا یار, اور دل کدھر لگا ہوا ہے؟ اس چیز سے لگا ہوا ہے جو کسی قیمت پہ ساتھ جانی نہیں ہے قبر میں. نہاری سے دل لگا لینا اتنا برا نہیں ہے, کھاؤ گے مزہ آئے گا, ختم. اتنا برا نہیں ہے, کیونکہ اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے پہلے نہاری اور بریانی کا مزہ انسان لے لیتا ہے. یہ چٹخارے زمان کے تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں, انجوائے کر لیتا ہے. دل کس سے لگاتا ہے؟ کروڑوں روپے کی دیواروں سے, اینٹوں سے, جس اور اتنا سریا ڈال دیا عمارت میں, اپنی ہڈیوں کا کیلشیم روزانہ ختم ہو رہا ہے, اور جو بنیادوں میں اتنا سریا ڈال کے خوش, میرا گھر, یہ بلڈنگ کس کی ہے بھائی؟ اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے بھائی, کرائے کے گھروں میں. ابے مرے گا تھوڑے دن رہ گئے, مر جائے گا. جتنا کئی کروڑ تو نے جو اس میں چھونک دی ہے نا پتھروں میں, یہ مر جائے گا تھوڑے دنوں میں. آپ بحریہ ٹاؤن پہ رالیں ٹپکاتے تھے نا, اب تو قیمتیں گر گئی ہیں, ورنہ ایک زمانے میں بحریہ ٹاؤن سے ہی ہمارا دماغ لوگوں نے چاٹ لیا تھا. مفتی صاحب بحریہ ٹاؤن, مفتی صاحب بحریہ ٹاؤن, جیسے میں کوئی بحریہ ٹاؤن ہوں. यानी आगे जुमला महजूफ था, मुफ्ती साहब बहरिया टाउन में प्लॉट लेना चाहिए, हर आदमी जिसके पास नहीं है बहरिया टाउन में मर रहा है। मैं लोगों से कहता था भाई रियाज मलिक जो है थोड़ी दिनों में, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे, लेकिन थोड़े दिनों में उसका जनाजा भी उठेगा, जो खरबपति है वो थोड़े दिनों में इन्ना लिल्ला होने वाला है, तो तेरे दो चार प्लॉटों से क्या हो जाएगा यार। मैंने 80-80 साल के लोगों को दुनिया से मोहब्बत करते हुए देखा है, जिनके बारे में डॉक्टर ने रिपोर्ट पेश की है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। जैसे वो एक बूढ़े मियां गए ना 80 साल के कनाडा में, उन्होंने एक लड़की से फेसबुक पे दोस्ती कर ली, लड़की इधर आ गई, उनका निकाह था उस 80 साल के, ये सच्ची मुच्ची का वाकया है। वो मस्जिद के इमाम के पास गए, कनाडा के, शाम को मेरा निकाह है, कनाडा से एक लड़की आ रही है, मेरा निकाह है, आपने निकाह पढ़ाना है, क्या क्या चाहिए? उन्होंने कहा आपकी जिंदगी चाहिए बस मुझे शाम तक, मस्जिद कुछ भी नहीं चाहिए। तो नजर सुए दुनिया, कदम सुए मरकज, कहां जा रहा है, किधर देखता है, अबे नजर तेरे कब्र की तरफ, रोजाना कदम कहां जा रहे हैं, डेली बेसिस की बुनियाद पे तू कदम कब्र की तरफ जा रहे है। कोई 60 साल की उम्र लेके आया है, कोई 70 साल की लेकर आया है, हर साल आहिस्ता आहिस्ता कब्र के, और ये बेवकूफ सालगिरह मना के खुशी मना रहा है, इसको नहीं पता जैसे कोई फांसी के फंदे पे किसी ने लटकना हो तो जैसे जैसे लटकने का टाइम करीब आ रहा है ये केक काट रहा है, तो इसको बेवकूफ नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। अबे तू या तो होता ना हर साल एक साल बढ़ाया जा रहा होता, आप कहते केक काटो यार, केक तो फिर भी नहीं काटो, केक खाने से तो और एक साल कम हो जाएगा, केक में कौन सी ऐसी सेहत वाली चीज है। लेकिन चलो खुशी मनानी है तो साल बढ़ने पर तो मनाओ, खुशी मौत के करीब होने पर यार ये बेवकूफों वाले काम करते हो यार। फिर मौलियों को बुरा भला कहते हो, कहते एंटरटेनमेंट, इनको पता नहीं क्या तकलीफ हो रही है हमारे केक खाने से। हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही, हम कोशिश करते हैं आपको सही गाइड करते हैं, इंसान के बच्चे बन जाओ, कोई लॉजिक वाले काम करो, नहीं करोगे तो हम कौन सा किसी की सालगिरह में घुस के कोई बम फाड़ के आते हैं वहां पे, बताते ही है ना गलत है, आपने करना है करो, नहीं करना है जाओ नहीं करो, आपकी मर्जी है भाई, खाते रहो केक। एक दिन आएगा कि मौत का फरिश्ता आएगा, बोलेगा पिछला साल तेरा आखिरी केक था बस, इसके बाद अब तू केक, ये आखिरी केक था। वही वो लतीफा मुझे याद आता है, ऐसे मौके पे एक आदमी की तीसरी दफा शादी, ये चौथी दफा शादी हुई ना, तीन बीवियां मर चुकी थी, तो चौथी बीवी को ना दुल्हन के कमरे में बैठा, तीन लेडीज सलवारें लटक रही हैं, बीवी ने पूछा ये किसकी सलवार है, उसने रोब में लेने के लिए ना उसने बोला ये मेरी पहली बीवी की सलवार है, जो बहुत ज्यादा जबान चलाती थी मैंने मार दिया उसको, ये उसका ख्याल था ये रोब में आ जाएगी ना, लिहाजा ये उसकी मैंने यादगार के तौर पर सलवार लटका ली। ये दूसरी कह रहे हैं, फिर मैंने दोबारा शादी की, वो भी बहुत जबान चलाती थी, बदतमीज बहुत थी, मार दिया मैंने उसको रोब में लेने के लिए ना, ताकि ये जरा पहले दिन से काबू में रहे, तो ये उसकी शलवार है, ये तीसरी शलवार का, फिर मैंने तीसरी शादी की, अच्छा चार खूंटे थे उसमें, तो तीसरी मैंने शादी की, वो भी बहुत बदतमीजी करती थी, बात नहीं मानती थी, उसको मार दिया मैंने, लटका दी शलवार। खातून में कॉन्फिडेंस बहुत था, उसने कहा अब यहां तेरा पजामा आएगा, मेरी शलवार नहीं आएगी, ये तीन खूंटे जो है ना ये जहन में रखना, अब ये आखिरी शलवार थी, अब यहां शलवार नहीं आएगी, अब यहां पजामा आएगा और तेरा आएगा, मेरा नहीं आएगा। तो फरिश्ता जब हम केक सालगिरह कर रहे होते हैं ना, बहुत से लोगों को फरिश्ता आके कह रहा होता है ये आखिरी केक है, अब तेरा केक नहीं आएगा, अब मौत का फरिश्ता आएगा, समझते हो कि नहीं समझते हो। तो ये तो मौका था आपकी डेट ऑफ बर्थ पे कि अल्लाह को याद करो यार, आप सोचो यार मौत के और करीब हो गए। मेरी जब डेट ऑफ बर्थ आती है मैं कहता हूं ले भैया आरिक साहब कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में, कितना ही जॉगिंग कर लो, कितना ही जिम कर लो, मैं नुस्खे बताता रहता हूं ना, बादाम खा लो, अखरोट खा लो, चार शादियां कर लो, जितना भी इंजॉय करो, एक दिन जनाजा उठेगा, एक दिन ऐलान होगा जी मौलाना साहब भी मार्केट से क्या हो गए, शॉर्ट हो गए, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल है, नेचुरल है। तो ये है दुनिया की मोहब्बत, पैसा कमाओ भाई, दिल थोड़ी लगाओ यार पैसे से, दिल लगाने की चीज नहीं है, मुसाफिर खाना है, जरूरत का तो हर एक को मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें तो यही है कि यार सुबह का नाश्ता अच्छा हो जाए, दोपहर दाल चावल आज मैंने बनवा के खाए घर में, मैंने भूख लग रही थी, मैंने घर में बोला दाल चावल और कच्चा प्याज, इतना खुदा की कसम इंजॉय करता है ना इंसान इन चीजों को यार, इतनी बड़ी नेमतें अल्लाह ने दी हुई हैं, फिर इस चीज की टेंशन क्यों ले रहा है यार। मुझे दोपहर दाल चावल मिल जाए ना, मजे की दाल बनी हुई, कड़ी पत्ता डाला हुआ उसके अंदर, बॉयल चावल हो और अचार नहीं था बस, अचार की टेंशन थोड़ी सी डिप्रेशन में जाने लगा था, लेकिन इतनी नेमत देख के आदमी क्या करे। तो अचार और दही और क्या मजा आता है खुदा की कसम, भूख में आदमी खाता है बहरिया टाउन की ऐसी की ऐसी यार। हमें तो ये जो कैश मजे मिल रहे हैं हमने तो इसको एंजॉय करना है। पैसा हो बहरिया टाउन में, हो सकता है मैं कल ले रहा हूं, आप मेरा बयान मेरे खिलाफ चला रहे हो, मुझसे आप बहरिया टाउन और खुद प्लॉट लेके बैठे हुए। प्लॉट लेने से मैं मना नहीं कर रहा, मेरा कोई है नहीं ना फिलहाल इरादा है, प्लॉट लेने से मैं मना नहीं कर रहा। लोग उलमा के बयान को गलत लेके जाते हैं, पैसा है तो ले लो भाई, नहीं है तो क्या है। तुम्हें सुबह शाम जो नेमतें मिल रही हैं कम है क्या? मुसाफिर के लिए इतनी नेमतें बहुत। हां अगर आज फरिश्ता आके कह दे कि आप सब लोगों ने 5-5 लाख साल इस दुनिया में रहना है, मुफ्ती साहब आपकी उम्र 5 करोड़ साल है, मैं फौरन डिप्रेशन में चला जाऊंगा। अबे ये 16 बच्चे तेरा बाप पालेगा सही है, इनको भी 5-5 करोड़ साल रहने फर्ज करो ना। अबे मेरा तो कोई प्लॉट बहरिया टाउन में है ही नहीं, मैं ये सारे बयाना छोड़ के पैसा कमाऊंगा। पहले बोलूंगा भाई पहले इतना 5 करोड़ कम थोड़ी है यार, इतने घर बनाओ बंगले बनाओ, बयान गया तेल लेने, पहले पैसा कमाओ नोट छापो भाई, फिर हलाल हराम की भी परवाह भी नहीं करता। जब बना लिया उसने मकसद तो हर एक को हलाल में थोड़ी मिलता है, फिर आदमी कहता है अबे देखा जाएगा बाद में यार, तोबा कर लेंगे यार 1 करोड़ साल के बाद, क्या कर लेंगे 5 करोड़ है ना तो 1 करोड़ साल के बाद तोबा कर लेंगे, तो वहीं से डिप्रेशन शुरू। हमारी जिंदगी है भाई 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल, और 60 के बाद तो रिटायरमेंट वाली जिंदगी चल रही होती है, ना निहारी खाने का रहता है ना बिरयानी, सूंघ के मजे लेता है बस उसमें। 4 निवाले के बाद डॉक्टर कहते हैं 5वां निवाला आप अपनी जिम्मेदारी पे लेंगे भाई, क्या ख्याल है? इतनी छोटी छोटी उम्रें यार इतनी स्पीड से गुजर रही हैं, उसमें निहारी मिल जाए दाल चावल मिल जाए, समझ रहे हो, सुबह पराठा मिल जाए खानदानी सा टाइट, मलाई थोड़ी सी चीनी, चीनी सेहत के लिए नुकसानदेह ऐसी की तैसी मलाई में थोड़ी सी चीनी डालो बड़ा मजा आता है। तो इतना ज्यादा सेहत को भी मुसल्लत नहीं करो ना अपने ऊपर, सेहत भी इत्तदाल से फिक्र करनी है, बहुत ज्यादा सेहतों को मुसल्लत तो करते हैं वो डिप्रेशन में ही शुगर हो जाती है उनको, जॉगिंग कर लो थोड़ा सा, जिम विम चले जाओ। तो ये क्या बच्चे घर में आओ, घर में बच्चों का की मोहब्बत मिलती है बस, ये बहुत खुदा की कसम अल्लाह की नेमतों के समंदर में डूबा हुआ है, चाहे भले किराए पे ही रह रहा हो, किराए पे रह रहा हो कोई बात नहीं, सर छुपाने की जगह है। खुशकिस्मत है जिसको किराए की छत मिल गई, छत तो छत ही होती है अपनी हो या किराए की, मजा दोनों का एक जैसा होता है, ना वो कब्र में साथ जाएगी ना ये कब्र में साथ जाए। बाकी बार बार मैं कहता हूं लोग कहते हैं बच्चों का क्या होगा, तो जो तुम भी तो किसी के बच्चे थे, जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारे बच्चों का होगा, जब तुम्हारे अब्बा के बच्चों का कोई खराब नहीं हुआ किराए के घर में जिंदगी गुजार ली, तो तुम्हारे बच्चों का भी इंशाल्लाह किराए के घर में जिंदगी गुजार लेंगे। समझते हो कि नहीं समझते? तो पैसा है तो बना लो घर उनके लिए, नहीं है तो टेंशन ना लो, क्या ख्याल है भाई? तुम भी तो अपने अब्बा के बच्चे हो ना, तो तुम बच्चों की टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम बच्चों की टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? तुम जब अपने अब्बा के बच्चे हो, अल्लाह ने तुम्हें एक घर दे दिया भले किराए का ही दिया है, तो तुम्हारे बच्चों के भी कोई इंतजाम हो जाएगा, वो 2 हाथ और 2 पांव भी तो लेकर आए हैं ना, ये वो की सारी जिंदगी बाप की कमाई बैठ के खाएंगे? 2 हाथ और 2 पांव अल्लाह ने इसलिए दिए हैं कि ये अपना पेट खुद भी भरेगा और अपने बीवी बच्चों का पेट भी ये कमबख्त खुद भरेगा, तो तुम ज्यादा टेंशन ना लो बच्चों की। तो ये दुनिया की मोहब्बत है, ये कोई औलाद की मोहब्बत नहीं है जो बच्चों की बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे होते हैं, तो एतदाल से टेंशन लो। खैर, तो ये है तज़किया के बातिनी गुनाहों से भी दिल को क्या कर लेना, बोलो पाक। तो ये काम मेरे भाई साइंसदानों का नहीं है, ये काम डॉक्टरों का नहीं है, डॉक्टर तो अंदर से काट पीट कर देगा दिल को, कोलेस्ट्रॉल कितना है अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत थोड़ी निकालेगा डॉक्टर, दुनिया का जैसे वो उस डॉक्टर ने उस बंदे को कह दिया कि 5 महीने का बच्चा माजूर है गिरा दे, तो वो बंदा मुझे बार बार कह रहे हैं मेरी वाइफ को डॉक्टर मशवरा दे रहे हैं, मैंने कहा देखो डॉक्टर मेडिकली देख रहा है कि एक माजूर बच्चा पैदा होगा तो सरवाइव नहीं कर पाएगा, सोसाइटी में बोझ बनेगा, डॉक्टर मेडिकल के लिहाज से सही बात कर रहा है। और मैंने कहा अंग्रेज तो पैदा होने के बाद भी बात होता है, तो वो बंदा माजूर है तो माजूर खुद कह देता है मुझे मार दो मेरी जिंदगी का क्या फायदा, फिर इस्लाम इसको खुदकुशी करार देता है। मैंने कहा हर चीज डॉक्टर से पूछने की नहीं है, डॉक्टर से बस ये पता चल गया बच्चा माजूर है काफी है, बाकी इसको कत्ल करना जायज है अच्छा काम है बुरा काम है ये डॉक्टर नहीं बताएगा, ये पैगंबरों का टॉपिक है कि किसका कत्ल किस वक्त जायज है और किस वक्त नाजायज। तो पैगंबरों से हमें यही पता चलता है कि मां के पेट में बच्चे का कत्ल जायज, बोलो नहीं है, इंसान है वो, जैसे बाद में नहीं मार सकते पहले भी नहीं मार सकते, और ये आजमाइश है, इस पे अल्लाह आपको नवाजेगा। कितने लोग हैं भाई जिनको माजूरों की वजह से रिस्क के दरवाजे खुले, उन पे घर में माजूर बच्चा पैदा हो गया, अल्लाह ने रिस्क के दरवाजे तोड़ दिए उनके घर में कि भाई तू माजूर की कफालत कर रहे हैं। इन्नकुम तुरज़कून बिज़ुआफाइकुम, हदीस में आता है तुम्हें कमजोरों की वजह से रिस्क दिया जाता है। मेरी मिसाल देख लो, मेरी जेब में थैला नहीं था, ये तो जब नहीं था तो मैं बताता नहीं था लोगों को, लोग बोलेंगे वो साहब चंदा मांग रहे हैं शायद। जो मेरी बातें थी ना 10 साल पहले, शादियां लोग समझते थे बड़ा करोड़पति आदमी है ये। जब मेरी 3 वाइफ 2011 में भी, मेरी 12 में 3 थी और बच्चे भी मेरे 10-11 थे, लोग कहते थे भाई बड़ा पैसा है, क्योंकि मेरे स्टाइल ऐसे ही थे जैसे बहुत पैसा है मेरे पास, ऐसे स्टाइल थे। हमने कभी नहीं लोगों से कहा एक्चुअली यू करके ना रोना धोना तो, लेकिन उस वक्त भी खा रहे थे, अब भी क्या है खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खिला रहे हैं अल्लाह ताला, तो अल्लाह खुशी रखे। अगर मैं परेशान हुआ तो देखो, जो दुनियावी परेशानी है वो तो हर एक पर आती है ना। हजरत मौलाना तारिम साहब पर परेशानी आई ना, बेटा का इंतकाल हो गया, याकूब अलैहिस्सलाम पर परेशानी आई, तो ये जो नेचुरल है, नॉर्मल है, जो तकवीनी उमूर कहलाते हैं, ये तो सबके साथ ही हो सकते हैं, तो मेरे साथ भी हो सकते हैं, आपके साथ भी। तो उसमें तो अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह उन परेशानियों से बचाए। लेकिन कुछ परेशानियां खामखा की हैं जो लोगों ने पाली हुई हैं, अल्लाह ने हमें उन वाली परेशानियों से अल्हम्दुलिल्लाह बचाया हुआ है, जो खामखा की परेशानी है। तो तज़किया पैगंबर की जिम्मेदारी क्या थी? तज़किया। अब ये जो बयान था ना लंबा हो गया, इस आखिरी चीज को मैंने एक्सप्लेन करना था। तो सहाबा नबी के हाथ पे तज़किया वाली बैत भी करते थे कि जाहिरी और बातनी क्या करना है, तज़किया, जिसका 28वें पारे में जिक्र भी है। या अय्युह नबी युदा जा अकल मोमिनात, ए नबी जब आपके पास मोमिन औरतें आए, युबा ये नका आपसे बैत करें, किस बात पर? अल्लाह युश्रिक नबिल्लाही शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। ये नबी के हाथ पे बैत हो रही है, खवातीन बैत हो रही हैं कि शरीक नहीं। वला यसकना चोरी नहीं करेंगी, वला यजनीना जिना नहीं करेंगी, वला यातीना बे बोहतान किसी पर बोहतान। बाज दफा खवातीन दुश्मनी में झूठ बोहतान लगा देती हैं नंदों पर, जिठानियों पे वगैरह वगैरह पे, तो बोहतान नहीं लगाएंगी। ये सारी किसकी बैत हो रही है? आमाल की। सहाबा कराम मदीना से मक्का आया करते थे इब्तिदा इस्लाम में, तो घाटियों में नबी से आमाल पर भी बैत करते थे, आमाल पर। ये वाली बैत जो थी, जो आमाल पर बैत और तज़किया वाली बैत थी, ये वाली बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खत्म हो गई। एक वजह से, वजह ये थी कि बगावत का खतरा था। यानी अगर उलमा ये वाली बैत लेना शुरू करते ना लोगों से, बुजुर्गान दीन, तो खतरा ये था कि कहीं दूसरी खिलाफत तो नहीं कायम कर रही है, कोई मुतवाजी हुकूमत तो नहीं, बगावत का खतरा था ये, क्योंकि खिलाफतें थी ना उस वक्त। तो ये वक्ती तौर पर मौकूफ कर दी गई आमाल वाली बैत। लेकिन जब खिलाफत का खतरा खत्म हो गया कि बगावत नहीं होगी, तो फिर बुजुर्गान दीन उलमा ने दोबारा ये वाली बैत शुरू कर दी, जिसको रूहानी बैत कहा जाता है, किसी से इस्लाही ताल्लुक की बैत। तो ये सदियों से सिलसिला चला आ रहा है कि बुजुर्गान दीन के हाथ पे जाके बैत करना, अपने आप को उनके हवाले करना, अपनी इस्लाह करवाना। लेकिन इसमें उलमा ने शर्त यह बयान की है कि उस बुजुर्ग के हाथ पे बैत हो सकते हैं जिनको अपने से पहले बुजुर्ग से इजाजत मिली हुई हो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ऐसे ही नहीं कोई उठ के लोगों को बैत करना शुरू, क्योंकि जिसका अपना तज़किया नहीं हुआ, जो खुद किसी से इस्लाही ताल्लुक नहीं है, वो आगे कैसे किसी की इस्लाह कर सकता है? तो ये जरूरी है। इसी मजमून को ना मैं 5 मिनट में इंशाल्लाह नमाज के बाद समेटूंगा मैं, क्योंकि नमाज का टाइम होने वाला है, तो ईशा की नमाज के बाद इस मजमून को मैं मुकम्मल करूंगा 5-10 मिनट के अंदर अंदर, फिर जो सवाल जवाब का सेशन होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आखिर में जो मैं मैसेज देना चाहता था वो ना दे पाऊं मैं, तो तमहीद ही सारी हो जाए। तो इसको मैं फिर इंशाल्लाह आखिर में 5-10 मिनट में निपटाऊंगा इसको, नमाज के बाद, ब्रेक के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। किसी ने कुछ पूछना हो तो वैसे ही पूछ ले, मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर दूं जो अभी मैं लेके चला था, कि बात इस पे चल रही थी ना कि जो बैत होती है, बैत अहलुल्लाह के हाथ पे बैत होना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, तज़किया के लिए, जाहिर बातिन को गुनाहों से पाक और साफ करना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये बैत का सिलसिला, खिलाफत वाली बैत तो चलती रही, لیکن جو روحانیت پر اور تزکیہ نفس کے لیے جو بیعت تھی یہ ختم کر دی گئی. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس میں ڈر یہ تھا کہ کوئی ایسا نہ ہو لوگوں سے بیعت لے کر دوسرا خلیفہ خلافت کا اعلان کر دے, کیونکہ دونوں کا طریقہ تو سیم ہی ہے نا. لیکن جب یہ خطرہ ختم ہو گیا کہ بھائی اب خلافت مضبوط ہو گئی ہے اور خلافت پھیل چکی تھی, بہت بڑے علاقے فتح ہو چکے تھے, اب یہ خطرہ ختم ہو گیا, تو بزرگان دین نے دوبارہ اس بیعت کے سلسلے کو شروع کیا. اس کو کہا جاتا ہے روحانیت پہ بیعت, تو وہ تزکیہ والی بیعت. تو اس میں یہ سلسلہ لگایا کہ بھائی کسی بھی اللہ والے بزرگ کے ہاتھ پہ جس کو پہلے والے بزرگوں سے اجازت بھی ملی ہو. اجازت کس بات کی؟ کہ بھائی اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ یہ خود بھی برائیوں سے بچے گا اور لوگوں کو بھی برائیوں سے بچانے کا اس کے اندر ملکہ اللہ نے عطا کی ہے, لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے یہ. اگر خود ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس کو بھی اجازت بیعت نہیں ملتی. خود تو ٹھیک ہے, لوگوں کو ٹھیک کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. بعض لوگ خود نیک ہوتے ہیں لیکن ان کو نیک بنانا نہیں آتا, بلکہ اور بگاڑ دیتے ہیں الٹا غلط طریقے سے تربیت کر کے. دیکھا ہوگا نا بعض دفعہ ابا ہر وقت نصیحت کر کے بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں, ایسے ابا بھی تو ہوتے ہیں نا, ہر وقت بچے کو نصیحت کر کے بچے کو کیا کر دیتے ہیں. اس کو تربیت تو نہیں کہی نا, تربیت تو نہیں ہے یہ. ابا کو فکر تو ہے لیکن ان کو اصلاح کرنا آتی نہیں ہے. تو یہ اصلاح کرنا بھی ایک فن ہے, ہر ایک کا کام نہیں ہے یہ. تو بزرگان دین میں یہ سلسلہ شروع ہوا, یہ پہلی صدی یا دوسری صدی کے اواخر میں ہی شروع ہو گیا تھا کہ جو بزرگان دین تھے انہوں نے لوگوں کا تزکیہ کرنا شروع کیا. اچھا, شروع میں یہ تزکیہ جو ہوتا تھا ظاہری اعمال کا نہیں ہوتا تھا, باطنی کا ہوتا تھا. اس لیے کہ اسلامی حکومتیں تھیں, خیر اتنی غالب تھی کہ لوگ زنا سے تو ویسے ہی بچتے تھے, جھوٹ سے, چوری سے, ان برائیوں سے ویسے ہی بچتے تھے, کیونکہ برائیاں آسان تھیں بھی نہیں. زنا کرنے والے کو چترول لگتے تھے تو کہاں سے کرے گا وہ. ساری عورتیں پردہ کرتی تھیں تو بد نظری ویسے ہی مارکیٹ میں نہیں تھی. سب کی داڑیاں تھیں, سب کے لباس شریعت کے مطابق تھے, سودی نظام ہی نہیں تھا تو سود کھائیں گے کہاں سے. لیکن باطن میں خرابیاں آنا شروع ہو گئی تھیں, شہرت کی لالچ, حب جا, بڑا بننے کا شوق. بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ہر جگہ ہماری ٹانگ اونچی رہے, ہوتی ہے نا, ہر جگہ ہماری ٹانگ کیا رہے, کام کوئی اور کرے نام کس کا آئے, ہمارا آئے. تو یہ جو باطن کی برائیاں تھیں نا, یہ ختم کرانے کے لیے بزرگان دین نے, صوفیاء کرام نے باقاعدہ بیعت کا سلسلہ شروع کیا. تو جو اس کام میں لگ گئے نا ان کو صوفی کہا جانے لگا. یہ لفظ نیا تھا, کام نیا نہیں تھا. بعض لوگ کہتے ہیں نا تصوف بدعت ہے, بالکل غلط کہتے ہیں. تصوف کا لفظ تو آپ بدعت کہہ سکتے ہیں, بعد میں جادو ہے. تصوف میں جو کام ہو رہا ہے وہ کام تھوڑی بدعت ہے. تو ناموں کو تھوڑی دیکھا جائے گا, کام کو دیکھا جائے گا کہ کیا ہے. کام اگر وہی ہو رہا ہے جو نبی کے دور میں ہو رہا تھا, صحابہ تابعین کے دور میں ہو رہا تھا, تو پھر وہ بدعت کہاں سے ہو گیا. جیسے فقہ کا جو لفظ ہے قرآن و حدیث سے جب ہم مسائل نکالتے ہیں, تو نبی کے دور میں تو یہ سب ایک ہی تھا, مسائل کے لیے الگ سے کوئی علم نہیں تھا. لیکن جب اسلامی حکومتیں پھیلی ہیں تو قرآن و حدیث سے مسائل نکال کے کتابوں میں لکھے گئے حلال و حرام کے, اس کو نام دیا گیا فقہ کا. تو یہ نام تو جدید تھا لیکن یہ کام جدید نہیں تھا. مسائل تو وہی تھے جو نبی کے دور میں, اس کو مرتب کر لیا گیا. سمجھتے ہو؟ اور آسان مثال سمجھاتا ہوں. مصحف عثمانی, حضرت عثمان نے قرآن مرتب کیا نا اپنے دور میں, ایک قرآن پہ جمع کر دیا سب کو, کیونکہ سب نے اپنے اپنے طریقے سے ترتیبیں الگ الگ لکھی ہوئی تھیں. کسی نے سورہ آل عمران پہلے لکھی ہوئی ہے, سورہ نساء بعد میں لکھی ہوئی ہے, کسی نے سورہ فلق سورہ ناس لکھی نہیں, کہ یہ تو سب کو یاد ہی ہوتی ہے, اس کو قرآن میں لکھنے کی کیا ضرورت. عبداللہ بن مسعود نے سورہ فلق سورہ ناس اپنے قرآن میں لکھی نہیں تھی, انہوں نے کہا تو بچوں کو یاد, سورہ فاتحہ بھی نہیں لکھی تھی انہوں نے, کہ اس کے لکھنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن بعد میں یہ تحریف کا ذریعہ بن سکتی تھی نا یہ چیز. بعد میں ہوتا لوگ کہتے یار عبداللہ بن مسعود کے قرآن میں تو یہ نہیں ہے اور فلاں قرآن میں تو یہ صورت پہلے ہے. ایک لڑائی کا خطرہ تھا تو حضرت حذیفہ بن یمان نے نبی حضرت عثمان کو خط لکھا آذربائیجان سے, یہ رشیا کی علاقہ ہے نا, فتح ہو چکا تھا. آذربائیجان سے خط لکھا کہ بھائی مسلمانوں میں قرآن میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے, ایک کا قرآن میں ترتیب الگ ہے, دوسرے کے قرآن میں ترتیب الگ ہے, تو آپ امت کو بچائیں ورنہ یہ تو بڑے مسئلے, یہ تو یہود و نصارہ کی طرح لڑائی کریں گے. حضرت عثمان نے بڑا خاندانی کام کیا. حضرت عثمان نے کہا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی خلافت پھیلی تھی جتنے قرآن ہیں سب جمع کر کے لاؤ، اور ایک ترتیب پہ الحم سے لے کے والناس تک سارے حفاظ کو بلا کے ان کی موجودگی میں جمع کر دیا، اور باقی سارے نسخوں کو آگ لگا دی، ٹھیک ہے نا، سب کو کیا کر دیا، آگ لگا کے جلا دیا. تو بڑا خاندانی کام ہو گیا کہ بھائی اب وہی، اس کو پھر نام کیا دے دیا گیا، مصحف عثمانی. اب کوئی کہے یار مصحف عثمانی نبی کے دور میں تو تھا نہیں، بھائی تھا، لیکن چونکہ اس قرآن وہی ہے جو نبی کے دور میں تھا، اس میں ترتیب تو سب کو اجازت تھی جس ترتیب سے چاہے لکھیں، لیکن اس کو مرتب چونکہ ایک خاص ترتیب سے حضرت عثمان نے کر دیا تو اس کا نام کیا پڑ گیا، مصحف عثمانی، حضرت عثمان کا قرآن کہہ لیں آپ اس کو. تو قرآن تو نبی کا ہی ہے، چونکہ مرتب حضرت عثمان نے کیا تو نام بعد میں پڑا، تو نام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب کوئی غیر مسلم کہ یہ تو قرآن بدعت ہے، یہ محمدی قرآن تو ہے نہیں، یہ تو عثمانی قرآن ہے. ہم کہیں بھائی ہے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مرتب حضرت عثمان نے کیا تو نام کیا پڑ گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فقہ حنفی یا شافی، یہ تو نبی کے طور کے ہی مسائل ہیں، لیکن مرتب چونکہ امام حنیفہ کے شاگردوں نے کیا تو اس کو نام کیا دے دیا، فقہ حنفی کہہ دیا، کسی کو فقہ شافی کہہ دیا. تو ترتیب کی وجہ سے، جیسے حدیث تو نبی کے دور میں تھی، امام بخاری نے جو حدیث کا مجموعہ جمع کیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں، حدیث بخاری کہہ دیتے ہیں. اب کوئی کہے تو بخاری تو، یہ منکرین حدیث یہی تو کہتے ہیں، تو بخاری تو 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے، 250-300 سال کے بعد کتابیں لکھی گئی ہیں، نبی کے دور میں تو یہ تھی نہیں. اور بھائی کتابیں نہیں تھیں، حدیثیں تھیں. تو جو مرتب کرتا ہے اس کا نام دے دیا جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو تصوف جو ہے نا، تصوف یا صوفی ازم جسے کہا جاتا ہے، یہ بھی نبی، یہ والا صوفی ازم نہیں جو جاہل لوگ چلا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو ناچنے گانے کی آ رہی ہے نا آج کل ٹوپی والے صوفی ازم کے نام پہ قوالیاں دھمال، جو اصل تصوف ہے وہ الگ ہے، جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ بالکل الگ ہے. تو جو اوریجنل تصوف ہے، یہ نام نبی کے دور میں نہیں تھا، مگر تصوف میں جو کام ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اپنے ظاہر باطن کی اصلاح کرنا، یہ کام نبی کے دور میں بھی ہوتا تھا، صحابہ تابعین کے دور میں بھی. صحابہ کے دور میں ایک بیعت رہ گئی تھی خلافت والی، روحانیت والی نہیں تھی، اس کی حکمت میں نے بتا دی، بعد میں وہ بھی شروع ہو گئی، پھر بزرگان دین نے اس کو بھی شروع کر دیا روحانیت والی بیعت کو. تو شروع میں تو یہ ہوتا تھا کہ بزرگوں کے ہاتھ پہ لوگ بیعت، اس کو تصوف کہا جانے لگا. اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ دل سے دنیا کی محبت نکالنا، ظاہری اعمال سب کے درست تھے، دنیا کی محبت، اس کے لیے بزرگان دین جس کو اپنے ہاتھ پہ بیعت کرتے نا، اس سے بڑے مجاہدے کرواتے تھے، جس کو دیکھتے ہی اس میں ٹھڑک بہت ہے. ٹھڑک کا پتہ ہے؟ جب دل میں کوئی خواہش ہوئی یہ پوری کیے بغیر بیٹھتا نہیں، کوئی انٹی یہاں سے گزر رہی ہے گھر تک پہنچا کے آتا ہے. یہ لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ ٹھڑکی. خواہشات پہ کنٹرول ہی نہیں ہے. گٹکا کھانے کا دل کیا، گٹکا کھا لیا، جو دل چاہ رہے. آج تو خواہشات کی تکمیل کا نام ہے نا. تو وہ بزرگان دین ان سے مجاہدے کرواتے تھے، حلال چیزیں بھی چھڑوا دیتے تھے ان سے، حلال چیزیں. اب علماء ظاہر کو ان پہ اعتراض ہوتا تھا، بھائی یہ تو شریعت نے حلال کیے ہیں، آپ ان کو ان کے اوپر حرام کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے تھے بھائی ہم حرام نہیں کر رہے، ان سے حلال بھی چھڑوا رہے ہیں تاکہ ان کے اندر جو ول پاور ہے وہ کیا ہو، وہ بڑھے. تو یہ حرام نہیں کر رہے، یہ ٹریننگ دینے کے لیے. جیسے فوجیوں کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے نا، جو کمانڈوز ہوتے ہیں، جو ایس ایس جی کمانڈوز ہوتے ہیں، تو جنگلوں میں ان کو انڈے پراٹھے تھوڑی کھلائے جاتے ہیں. اب کوئی کہے آپ تو ہم سے حلال چھڑوا لی، انڈا پراٹھا تو اسلام میں حلال ہے. اسے کہا بھائی تمہیں انڈے پراٹھے اس لیے چھڑوائے ہم نے کہ جب میدان جنگ میں لڑنا پڑتا ہے تو ہر جگہ انڈے پراٹھے اویلیبل نہیں ہوتے. دشمن یہ نہیں ہوتا کہ چونکہ ایکچولی آپ بہت تھک چکے ہیں کہ سامنے ہوٹل ہے وہاں سے دو پراٹھے کھا کے آئیں، اتنی دیر میں انتظار کر رہا ہوں دوبارہ ہم فائٹ شروع کریں گے. وہاں تو کبھی کھانے کو ملتا ہے، کبھی پتے بھی کھانے پڑتے ہیں. تو ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، پتے بھی کھلائے جاتے ہیں. تو اسی ٹائپ کا مجاہدہ صوفی اکرام کروایا کرتے تھے. سمجھتے ہو؟ دنیا کی محبت نکلوانے کے لیے نوٹ جلوائے، پیسے جلوائے جاتے تھے کہ جلاؤ. اس وقت تو نوٹ نہیں ہوتے تھے، یہ اشرفیاں ہوتی تھیں، صدقے کرو تاکہ نکالو اس کو دل سے. بڑے سخت مجاہدے ہوتے تھے جس کا آج میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسا رگڑا دیا جاتا تھا، کسی میں دیکھتے تکبر ہے، تکبر بہت زیادہ ہے، اس کی اصلاح کے لیے اس سے ایسے کام کروائے جاتے تھے، اس کی یہ تکبر ٹوٹے. اس سے جھاڑو دلوائی جا رہی ہے، اس سے نمازیوں کے جوتے سیدھے کروائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. روزانہ نمازی آئیں گے تم ان کے چپل سیدھے کرو، جھاڑو دو، تاکہ اس کی جو انا ہے نا یہ کیا ہو، तो ये सेटअप था, ये बड़ा मुबारक सिलसिला था। तो उन बुजुर्गों के मुरीदीन होते हैं, फिर वो देखते हैं इनमें जो सही है, जिन उन बुजुर्गों को उनके बारे में ख्याल होता कि ये ज्यादा इस्लाह के काबिल है, इनका बड़ा हमने मुजाहिदा कराया है और इनके आसार ऐसे लगते हैं कि ये नेक हैं भी और नेक बना भी सकते हैं, तो उनको खिलाफत दी जाती थी, इजाजत बैत दी जाती थी कि हम आप हमारी जिंदगी में भी बैत कर सकते हैं, हमारे मरने के बाद भी लोगों को बैत कर सकते हैं। ये सिलसिला बड़ा अच्छा सिलसिला, इस सिलसिले चार सिलसिले फिर मशहूर हुए, चिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी और सिलसिला चिश्तिया कादरिया, नक्शबंदी और सोहरावर्दी। ये सिलसिले का मतलब ये है कि हर बुजुर्ग की इस्लाह का अपना एक तरीका होता था। जैसे बाज बुजुर्गों की इस्लाह का ये तरीका होता, जैसे नक्शबंदी सिलसिले में ना ये होता था कि अल्लाह की मोहब्बत इतनी पैदा कर दी जाए कि गुनाह खुद ही छोड़े, वो बुराइयों को खुद ही छोड़े। बाज सिलसिलों में ये था कि अल्लाह का खौफ पैदा किया जाए। तो ये चारों का तरीका एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा क्या था, डिफरेंट था, लेकिन मकसद सबका क्या था, एक एक भाई अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो और बुराइयों से छूटें। तो ये चार सिलसिले चले हैं, पूरी दुनिया में यही फिर राइज हुए। आप तुर्की में जाएं, सऊदीया में जाएं, सऊदीया में भी अब उन्होंने तसव्वुफ को खत्म कर दिया क्योंकि उसमें दो नंबरियां बहुत ज्यादा हो गई थी। जब ये शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तहरीक चली है ना, तो बहुत ज्यादा दो नंबरियां हो गई थी, जैसे हमारे यहां भी दो नंबरियां इसमें बहुत ज्यादा हैं। तो सऊदी हुए तो उन्होंने तो सारी ऐसी की तैसी कर दी, बोले चलो खत्म सारा, चलो पतली गली से क्या करो, क्योंकि उसमें दो नंबरियां ज्यादा हो गई थी और एक नंबर ही बहुत थोड़ी रह गई थी। तो फिर सऊदी अरब साफ जगह है ना, वहां अगर ये दो नंबरियां चलती रहती वो तो नबी की कब्र को क्या बना लेते, वहां तो क्या कुछ हो जाता। लेकिन ये कि फी नफ्स ही ये सिलसिले पूरी दुनिया में चले हैं बुजुर्गाने दीन के, ये चारों सिलसिले बहुत ज्यादा, हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, तुर्की, पूरी दुनिया में जाएंगे आपको इन सिलसिलों के बुजुर्ग आज भी मिलेंगे जो लोगों को बैत करते हैं, उनकी इस्लाह करते हैं। लेकिन इन चारों सिलसिलों में भी दो नंबरियां भी बहुत फैली हैं फिर, जिसकी वजह से ये चारों सिलसिले बदनाम भी हुए। अब नक्शबंदी कोई अपने आप को कह रहा हो ना तो आदमी डर जाता है, पता नहीं ये मार्केट में क्या लाएगा, कोई नहीं लाएगा मार्केट में, ठीक है। अब अगर किसी के नाम के साथ लगो ना, कादरी, सोहरावर्दी, चिश्ती, तो समझ लो किसी कव्वाली में शिरकत के लिए जा रहा है। तो वो जो असल रूह थी ना वो साइड पे रह गई और ये मजार परस्ती, कव्वालियां और पीर साहब की चापलूसी, मक्खनगिरी, पीर साहब को ऐसा खुदा बना लेना कि बस पीर साहब ने जो कह दिया, चाहे कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, तो पीर परस्ती जिसे कहते हैं वो पीर परस्ती आ गई। आप सिंध में देखो, पंजाब में देखो, ये तसव्वुफ ही के सिलसिले थे जो बिगड़ के पीर परस्ती पे गए हैं। लेकिन इनमें भी सारे बिगड़े नहीं है, इन्हीं चारों सिलसिलों में जो सही उलमा थे, बुजुर्गाने दीन थे, वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में मौजूद हैं। समझते हो कि नहीं समझते हो, जो अकीदा तौहीद पर कायम है, सुन्नत पर कायम है, उन्होंने तसव्वुफ में बिदअतों को घुसने नहीं दिया। हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा बिदअतें तसव्वुफ में आ गई थी। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने उसके खिलाफ बहुत जबरदस्त काम किया, बहुत ज्यादा काम किया उन्होंने, तसव्वुफ से सारी बिदअतों को निकाला है और उन्होंने उसकी रूह को फोकस किया। मिसाल के तौर पर उनकी खानकाह में एक शख्स आया और नमाजियों की चप्पल सीधे कर रहा है ना, उन्होंने उसको पाबंदी लगा दी कि तू ये काम नहीं करेगा। वो कह रहा था मैं तवाज़ो सीख रहा हूं। उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर इससे तकब्बुर पैदा होगा, ठीक है ना, तुम्हारे अंदर ये एहसास होगा मैं 18वें ग्रेड का ऑफिसर हूं लेकिन मैं कितना नेक हूं कि मैं नमाजियों के चप्पल सीधे करता हूं। तो उन्होंने कहा ये तकल्लुफात छोड़ो, जो असल चीज है ना उसको फोकस करो कि अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा हो, दिल में तवाज़ो। उन्होंने तवाज़ो के मफहूम को बयान किया, तकब्बुर को डिफाइन किया। तकब्बुर असल में होता है, बहुत सारी गड़बड़े जैसे होती हैं, हर चीज जब चलती है सही होती है, बाद में उसमें क्या आ जाती है, गड़बड़े आ जाती हैं। तो अब ये तसव्वुफ के जो चार सिलसिले हैं आज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे बुजुर्गान दीन इसमें हैं जो मुत्तबे सुन्नत हैं, तौहीद परस्त हैं और लोगों को सही गाइड करते हैं। लेकिन इसमें, इन सिलसिलों में दो नंबरियां भी बहुत ज्यादा फैल चुकी हैं। इसलिए हम अब लोगों को ये कहते हैं भाई किसी बुजुर्ग से बैत होना है तो इतना काफी नहीं है कि ये इन सिलसिलों में किसी सिलसिले के से ताल्लुक है, इतना काफी नहीं है क्योंकि इन सिलसिलों में बिदतें बहुत ज्यादा फैल गई हैं। नंबर दो, इतना भी काफी नहीं है कि किसी बुजुर्ग ने खिलाफत दी हो। बात आ रही है समझ में, किसी बुजुर्ग ने खिलाफत नहीं दी फिर तो बैत हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि जब किसी माजी के बुजुर्ग ने एतमाद नहीं किया तो आज हम कैसे किसी को मेंटोर बना सकते हैं अपना। खुद से थोड़ी कोई कहेगा कि मैं इतना नेक हूं कि मुझे आते, ये तो इसका मतलब ये तो बंदा ही दो नंबर है। जो खुद नेक होने का दावा कर रहा है वो कभी भी नेक नहीं हो। आपके बड़े कहेंगे हाँ भाई ये इस काबिल है कि इसके हाथ पे बैत हो जाओ, तो उन बड़ों के ऑर्डर पे अगर कोई कर रहा है तो ठीक है, बड़ों के ऑर्डर के बगैर कर रहा है तो ये वो मनसब की तरह है कि जो मनसब चाहता है वो मनसब का अहल नहीं होता कभी भी। तो पहली शर्त यह है कि किसी भी बुजुर्ग के हाथ पे आप बैत होते हैं ना, रूहानियत की बैत, कि आप अपनी इसलाह करना चाहते हैं, अपने आप को जाहिर बातिल गुनाहों से पाक करना चाहते हैं, तो पहली शर्त यह है कि उसको इन्हीं सिलसिलों में से किसी बुजुर्ग से इजाजत बोलो मिली हो, माजी के किसी बुजुर्ग ने एतमाद किया हो, वो बुजुर्ग भी काबिल एतमाद हो। नंबर दो, आप खुद भी तजिया करें कि ये इजाजत सही मिली है या गलत मिली है, क्योंकि आजकल खिलाफतें होलसेल के हिसाब से बट रही हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं बैंक में सूदी जॉब कर रहे हैं, पीर साहब ने उनको इजाजत बैत दे दी, ना उनका हुलिया शरीयत के मुताबिक, ना उनका लिबास शरीयत के मुताबिक, फर्ज नमाज तक नहीं पढ़ रहे होते, तो अब ये गद्दी चल रही है। गद्दी नहीं होती जैसे गांव देहातों में पीर साहब की गद्दी है, गद्दी पे फलां के बैठ गया, तो गद्दी पे देखो बैठा कौन होता है, सिगरेट पी रहा है, पान खा रहा है, खवातीन बेपर्दा सुबह शाम आके बैठ रही हैं, बस जी गद्दी है जी, पीर साहब क्या है बहुत पहुंचे हुए हैं, तो ये वो तसव्वुफ नहीं है जो मशाइख और बुजुर्गान दीन ने शुरू किया था। समझ में आ रही है बात, ये वो वाला तसव्वुफ नहीं है। तसव्वुफ का मतलब ये है कि जाहिर बातिन शरीयत के मुताबिक कर लो बस। तो जिससे बैत होना चाहते हो पहले उसके अंदर वो अलामतें नजर आए कि ये खुद भी शरीयत का पाबंद है या नहीं। नंबर दो, इनको जिन बुजुर्गों से इजाजत मिली है वो खुद भी काबिल एतमाद है या नहीं है, ऐसा तो नहीं किसी बिदती से इजाजत मिली हो, गद्दी नशीन जो चल रहे होते हैं जाहिल लोग, कवालियां या कब्रों पे सरदे हो रहे हैं, ऐसे बुजुर्गों को मैं जानता हूं आजकल एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते, वो करामतों के किस्से सुबह शाम बयान करते रहते हैं बैठ के। ना भाई, असल क्या है, कुरान और सुन्नत, कुरान और सुन्नत को फॉलो करें। एक मिनट अभी लेता हूं आपसे। तो अगर कोई ऐसा शेख मिले जो कुरान और सुन्नत को फॉलो करता हो, उसको बाकायदा इजाजत भी मिली हुई हो, उसकी महफिलों में बैठ के आपको लगे कि ये कुरान और सुन्नत को फॉलो करते हैं, बिदत ही नहीं है, तो खूब समझ लें इस जमाने में भी बैत होना किसी बुजुर्ग से ये बहुत फायदा है। वो काम जो आप 20 साल में करते ना, किसी बुजुर्ग की रहनुमाई में किसी अल्लाह वाले से इस्लाही ताल्लुक कायम करोगे, तो जो काम 20-25 साल में होना था वो आपका 2-3 साल में हो जाएगा। जैसे आप अपने तौर पर जिम में जाके सेहत बनाना शुरू करते हो ना, तो हो सकता है मेहनत बहुत हो, आउटपुट उसका क्या हो, बहुत कम हो, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, कहीं ना कहीं से तो स्पीड ब्रेकर निकलेंगे, कुछ नहीं तो शुगर मेंटेन रहेगी, आड़े तिरछे हो जाओगे लेकिन बीमार नहीं। जब भी आप वर्क करते हैं तो किसी भी तरह से अपनी एनर्जी को जब यूटिलाइज करते हैं तो सेहत को तो बहरहाल फायदा होता ही है, चाहे आड़े तिरछे ही वेट उठाते रहो। लेकिन अगर किसी माहिर ट्रेनर की मौजूदगी में जाके आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको डाइट प्लान बताएगा, आपको बताएगा भाई ये वाला वेट उठाओ, फिर अब ये नहीं, अब ये वाला, ऐसा ना हो कि हाथ आपके इतने बड़े हो जाएं टांगे क्या हो। मैंने एक जिम में एक बंदे को देखा, ऊपर से इतना बड़ा, टांगे ऐसे जैसे लकड़ी पे खड़ा हुआ है। मैंने उसको बोला आप थाइस की एक्सरसाइज क्यों नहीं करते, उन्होंने कहा भाई घुटनों में पानी आ जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। मैंने कहा ये जो इतना बड़ा जिस्म आपके बारीक से टांगों ने उठाया हुआ है, ये टांगे बैठ जाएंगी जमीन में, धस जाओगे किसी दिन। तो किसी ट्रेनर से अगर रापता कर लेते, इंटरनेट पे इधर उधर देखा होगा कहीं कि थाइस लगाने से ये हो जाता है, थाइस की एक्सरसाइज से कुछ, नेट पे तो सब कुछ पड़ा हुआ है, बस वहीं सुन के ही मान ले आए। किसी प्रॉपर ट्रेनर से जाके पूछते तो वो बताता भाई थाइस तो सबसे ज्यादा अहम है, पहले नीचे की इमारत को तो मजबूत करो, ये ऊपर का धड़ किस पे रखा हुआ है आपने। जो लोग ऊपर की वर्जिशें करते रहते हैं ना, थाइस वगैरह नहीं करते, वो घुटने जवाब दे जाते हैं उनके थोड़े दिनों में, इतना वेट उठाया हुआ होता है घुटने ने, ऊपर लेके घूम रहा होता है वो, सही है ना। तो अब क्या है, ट्रेनर क्या कर देता है, ऐसी खुराकें बता देता है, ऐसे टिप्स बता देता है, और फिर आपको बार बार उससे हिदायत लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता किताब में पर्चा लिख के चला गया कि 10 साल तक इन उसूलों पर अमल करो, ना ना ना, हर हफ्ते वो रिपोर्ट तलब करता है, एक महीने बाद आपकी बॉडी को देखेगा, हाँ भाई कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, फिर खुराक आपके हिसाब से क्या करेगा, चेंज करेगा, भाई ये आप पे मुआफिक नहीं है, आप ऐसा करो ये खा लो, आप थोड़ी सी मीठा बढ़ा दो, बहुत ही बारीक होते जा रहे हो, ठीक है ना, लड्डू मड्डू खा लो, इस तरह करता है ना। तो ये इसी तरह जिस बुजुर्ग से इस्लाही ताल्लुक कायम किया जाता है तो उससे ताल्लुक कायम रखा जाता है, वो गाइड करते हैं पूरी जिंदगी, गाइड करते रहते हैं, उसके बड़े फायदे होते हैं इंसान को। मैं अगर हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह से बैत ना होता, मैं कोई अभी भी बहुत नेक नहीं हूं, बहुत क्या नेक ही नहीं हूं, हर आदमी को अपनी बुराइयां पता होती हैं, लेकिन जो टूटा फूटा हूं ना मैं, ये मुफ्ती रशीद अहमद साहब की वजह से हूं। मैं अगर बैत ना होता और मैं सिर्फ दीन का इल्म हासिल करता, मैं जो फितना फैलाता ना सोसाइटी में, आपकी सोच है वो, क्योंकि मुझे जिस तरह से आता है ना फितना फैलाना, जो यानी जो अल्लाह ने मुझे टूटा फूटा एक दिमाग दिया है, वो आपकी, मैं ऐसा बेहतरीन फिरका बनाता, मैं कहता मैं फिरके सारे खत्म कर रहा हूं और खानदानी किस्म का फिरका मार्केट में ले लेकर आता हूं, जो कि आजकल हो रहा है ना, हर आदमी नया उठता है फिरके खत्म कर रहा हूं, कैसे खत्म कर रहा हूं, नया फिरका मार्केट में कोई नई चीज ला रहा होता है। इल्म के साथ अगर इस्लाह ना होना इंसान की, ये इल्म तबाही है, ये बर्बाद कर देता है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कोई जाहिल थोड़ी था, बड़ा आलिम था, खुदा का खौफ नहीं था तो बेड़ा गर्क करके गया ना, नबूवत की बुनियाद रखे गया। आजकल सुना है दो चार दिन पहले किसी ने इमाम मेहदी का दावा कर दिया, कोई मेहदी बन रहा है, कोई नबी का दावा कर रहा है, कोई नया मुफ्ती बन के आ रहा है मार्केट में। तो हमें तो सबसे पहले सिखाया गया तवाज़ो, क्या सिखाया गया, हम नहीं बने, मैं नहीं कह रहा कि हम कोई मुतवाज़े हैं, हमारी बुराइयां हमें पता है, अल्लाह को भी पता है, अल्लाह को तो हमसे भी ज्यादा पता होंगी, लेकिन जो टूटी फूटी अगर अल्लाह मुझसे कोई खैर का काम ले रहा है तो उसकी वजह क्या है, हम 18 साल की उम्र में एक बुजुर्ग के हाथ पे जाके बैत हो गए, ऐसे ही नहीं जल्दबाजी में, बल्कि पहले हमने उन बुजुर्ग की किताबें पढ़ी, उनकी अमली जिंदगी देखी, देखा कि खुद शरीयत को कितना फॉलो करते हैं, उनके बयानात में गए तो गालिब गुमान हो गया कि भाई ये वाकई क्या है, अल्लाह वाले हैं। उन्होंने 20 साल बुखारी पढ़ाई मदरसे में तो पता चल भाई इनके पास इल्म भी है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाई हैं मदारिस में, कई कई साल फतवे का काम किया, रिसर्च भी है और अल्लाह वाले भी हैं, दुनिया की मोहब्बत उनके पास बैठ के बहसी जेवर में हजरत मौलाना शरीफ थानवी ने लिखा है ना, किसी शेख व मुर्शिद की सही अलामत क्या है कि उसके पास बैठ के दुनिया की मोहब्बत खत्म हो। अगर वहां बैठ के गाड़ियों की और दुनिया की मोहब्बत लेके जाते हो तो इसका मतलब ये खुद ही बुजुर्ग नहीं है। ठीक है, मोहब्बत क्या होनी चाहिए, खत्म, ये पहली अलामत है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो है ना, हमने जितने आप माजी में देखो बड़े बड़े अकाबिर गुजरे हैं। अच्छा, यहां एक बात, तो चूंकि ये जो बुजुर्गान दीन है ये अल्लाह का जिक्र बहुत करवाते हैं, क्योंकि जिक्रुल्लाह के बगैर कोई बुजुर्ग, बुजुर्ग का मतलब नेक आदमी, बुजुर्ग की कोई अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है, बुजुर्ग का मतलब इंसान का बच्चा, शरीफ आदमी, नेक आदमी। आपके जहन में बुजुर्ग से फौरन ये आएगा कोई अजीब सी कोई मखलूक जिससे ना चला जा रहा हो ना बैठा जा रहा हो, चार आदमी लेके चल रहे हो, तो ये मतलब बुजुर्ग का नहीं है। बुजुर्ग का मतलब जो गुनाहों से बचते हैं, दिल में दुनिया की मोहब्बत ना हो, अल्लाह की नजर में वो बुजुर्ग है बस। ये सबसे बड़ी क्या उसमें क्या वो होनी चाहिए, दुनिया की मोहब्बत खत्म हो उसके अंदर से। एक और बात दिमाग में, हाँ, तो अल्लाह का जिक्र वो बहुत करवाते हैं, तस्बीह हाथ पकड़ा देते हैं, चलो भाई अल्लाह अल्लाह करो बैठ के। हमारे हजरत हमें जिक्र बताते थे ला इलाहा इल्लल्लाह 200 दफा ना, हम रात को उठ के ला इलाहा इल्लल्लाह की जरबे लगानी है। ला इलाहा में तसव्वुर दिल से अल्लाह के सिवा सब कुछ निकल रहा है, इल्लल्लाह का मतलब सिर्फ कौन, अल्लाह। तो बड़ा फायदा होता है इससे, बार 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 बार, तो ऐसा एक अजीब इंसान का दिल बनना शुरू होता है, अल्लाह की मोहब्बत पैदा होना शुरू होती है। तो अब उससे क्या होता है, अब इससे ना बाज लोगों को, आजकल के जो नए नए स्कॉलर्स आ रहे हैं ना, वो क्या कहते हैं, ये जो सूफी लोग हैं ये जिक्रुल्लाह लगा देते हैं, ये जिहाद तो करते ही नहीं है, ये सूफियों ने दीन का बेड़ा गर्क किया। मैं असल सूफियों, जो जाहिल सूफी हैं उन्होंने तो वाकई बेड़ा गर्क किया है, और मेजॉरिटी जाहिल सूफियों की ही है ये आज के दौर में। आजकल जो पीरी मुरीदी चल रही है ना, इसमें मेजॉरिटी क्या है, गुमराह है। समझते हो कि नहीं समझते, वो पीर साहब असल होते हैं, अल्लाह रसूल मकसद ही नहीं होते, मकसद ही पीर साहब बन चुके हैं, वो समझते हैं पीर साहब बख्शवा देंगे हमें। तो असल जो है ना उसमें क्या है, जिक्रुल्लाह करवाते हैं। तो इससे लोगों को इतराज होता है, भाई ये तो अल्लाह अल्लाह करवाते रहते हैं, ये तो जिहाद नहीं करते, ये तो निजाम की तब्दीली की बात नहीं करते। लेकिन आप अगर हिस्ट्री उठा के देखो, जितना जिहाद में कुर्बानी सूफिया किराम ने दी है ना, इतनी कुर्बानी किसी और ने नहीं। क्योंकि जब अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारी भड़कती है तो मैदान जंग में भी वही उतरते हैं। आप माजी उठा के देख लेना जिहादी तारीखें, आज देख लो फिलिस्तीन में जो लड़ रहे हैं ना, میجورٹی صوفی ازم سے ان کا تعلق ہے جو فلسطین میں لڑ رہے ہیں نا یہودی کے خلاف, ان میں میجورٹی تصوف کو مانتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ان کے بڑے بڑے کمانڈر کسی نہ کسی بزرگ سے بیعت ہیں, کیونکہ اس کے بغیر وہ موٹیویشن نہیں ملتی. جہاد کی باتیں کرنا آسان ہے, خدا کی قسم میدان جنگ میں لڑنا بڑا مشکل کام ہے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بچپن کے دوست ناصر بھائی, لڑ چکے ہیں نا, یہ بھی ان کا بھی میدان جنگ کا تجربہ ہے ماشاءاللہ. ان کو پتا ہے ماضی میں نا جب رشیا کا جہاد ہو رہا تھا تو یہ ویڈیو نہ لے کر آؤ پولیس پکڑ کے لے جائے گی بھائی. تو یہ ہمارے پرانے دوست ہیں, یہ بھی جا چکے ہیں. باتیں کرنا بہت آسان میدان جنگ میں, جب تک اللہ کی عشق کی چنگاریاں محبت کی چنگاریاں نہ بھڑک رہی ہوں نا کوئی میدان میں ٹک نہیں سکتا. میں دعوے سے کہتا ہوں آج جتنے یوٹیوبرز آ رہے ہیں جہاد کرو, یہ مولوی جہاد نہیں کر رہا, ان کا باپ بھی جہاد نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے نا. اور جن مولویوں پہ اعتراضات کر رہے ہیں میدان جنگ میں آگے بھی وہی ہوں گے. اب لوگ کہتے ہیں پھر غزہ کیوں نہیں جا رہے؟ آپ راستہ بتا دو بھائی, راستہ نہیں ہے غزہ جانے کا میرے بھائی, کہاں سے جائے آدمی. تو بارڈر ہے نا, بارڈروں پہ کوئی جانے نہیں دے گا آپ کو, بلکہ الٹا پکڑ کے جیل بھیج دیں گے. تو جہاں راستہ ملے نا آپ کو, تو جتنے جو اللہ اللہ کرتے ہیں نا تسبیحات لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور لوگ ان پہ کئی خانقاہوں میں صرف اللہ اللہ سکھا رہے ہیں یہ لوگ, دیکھنا یہ سارے اللہ اللہ کرنے والے شارٹ ہو جائیں گے, سارے جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے. اور جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں وہ باتیں ہی کر رہے ہوں گے یہاں بیٹھ کے. تو جہاد آسان کام نہیں ہے. جہاد کے لیے جب تک دل سے دنیا کی محبت نہیں نکلتی, دیکھو پاکستانی فوج کو جتنا مرضی آپ برا بلا کہو, لیکن چونکہ مسلم فوج ہے نا, مسلم ہے. میں نے جن فوجیوں سے ملا ہوں شہادت کا جذبہ ہوتا ہے, کیوں؟ کچھ نہ کچھ اسلام کی وجہ سے اللہ کی محبت کی رمق ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے ملک بچا ہوا ہے. اختلاف ہو سکتا ہے فوجیوں کی پالیسی, محمد مشرف نے جو کچھ کیا تھا 100% غلط کیا تھا, اڈے دے کے افغانستان پہ جو حملہ کروایا, ہر چیز میں ہم فوج کی حمایت نہیں کرتے, لیکن چونکہ مسلم فوج ہے شہادت کلمہ یہ سب چیزیں سلیبس کا حصہ ہیں, لہذا جو ہمارے فوجی جن کو نشان حیدر ملا, آپ ذرا ان کی ہسٹری دیکھو, آپ کو یہ غیر مسلم فوجیوں میں ایسے جنگجو نہیں ملیں گے. آپ کو ملیں گے تو بہت کم ریشو ہوگا. وہ کارگل پہ جس کو نشان حیدر ملا تھا, وہ میجر کو انڈین آرمی نے اس کی تعریف کی تھی, یار یہ تو بہت بہادری سے لڑا ہے, کیونکہ شہادت کا جذبہ ہوتا ہے نا یار. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد مختصر طریق الجنہ, جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ کیا ہے؟ اے بھائی کیسا بہترین شارٹ کٹ راستہ, اتنا لمبا ٹریک کاٹ کے یہ اتنے مجاہدے کر کے شارٹ کٹ راستہ کیا میدان جہاد میں شہید. تو یہ سب چیزیں سنی بھی ہوتی ہیں. تو جس کے دل میں جو اللہ کا ذکر کر کے تہجد پڑھ کے اللہ کی محبت کے چشمے ابل رہے ہوں, اس کے دل میں کیسا شہادت کا جذبہ ہوگا. ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اللہ والوں کو جو شہادت نہ ملنے پہ روتے تھے, شہادت نہ ملنے پہ روتے تھے. ایک طرف بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ حلق میں اٹکے ہوئے ہیں بھائی, دوسری طرف کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے اور مجھے شہادت نہیں مل رہی, یہ جذبے ہوتے ہیں. تو یہ تصوف جو ہے نا, جو سچی مچی والا تصوف ہے, یہ بہت ضروری ہے. سمجھتے ہو؟ ہاں, جھوٹی موٹی کا تو تصوف چل رہا ہے آج کل, گدی پیر کی گدی, وہ گدی پہ کوئی بھی چرسی موالی آ کے بیٹھا, وہ گدی نہیں ہٹ کے دے رہی اس سے. پھر اپنے بیٹوں ہی کو خلافت دینا, چاہے وہ نیک نہ بھی ہوں, پیر صاحب کی خلافت کہاں جائے گی؟ بیٹوں میں جائے گی. بھائی اگر نیک ہیں تو پھر ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر کیوں جا رہی ہے خلافت؟ تو ہم نے دیکھا اس زمانے میں ایک اچھا, پھر میچور لوگوں کو خلافت ملتی ہے, 18 سال کی عمر میں ایک بچے کو خلافت مل گئی. میں نے کہا بیٹا ابھی تو تمہاری عمر کیا ہے, پتہ نہیں تم کیا کیا کر رہے ہوگے, اللہ محفوظ رکھے سب کو, تمہیں خلافت مل گئی تم تو بگڑ جاؤ گے. اس عمر میں تمہیں کوئی اپنا گدی نشین بنا دے تو اتنے سے بچہ میچور تھوڑی ہوتا ہے. جب لوگ اس کے ہاتھ پہ آ کے بیعت ہوں گے تو وہ سدھرے گا یا بگڑے گا؟ وہ تو بگڑنا شروع ہو جائے گا. تو کوئی معیار ہی نہیں رہا ہے, ایسے خلافتیں بٹ رہی ہیں. جس نے پیر صاحب کی شان میں زیادہ اچھی شاعری کر دی, لے بھائی تجھے بھی خلیفہ بنا دیا. تو ایسا نہیں ہے, لیکن اگر جو صحیح پروسیس ہو نا تو یہ بہت بہترین راستہ ہے اصلاح کا, اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اب آخری بات جو میں بیان میں لے کے چلا تھا, یہ ہمارے بچپن کے دوست ہیں ناصر جمال, اور بچپن کے دوست کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے. اس سے پھڈا ہو گیا نا تو چونکہ وہ آپ کے سارے راز جانتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ کون سی کلاس تھے وہ ناصر بھائی؟ ساتویں کلاس میں ہم اکٹھے دو نمبر اسکول جاتے تھے نا, اسکول کا نام دو نمبر تھا, ویسے اسکول دو نمبر نہیں تھا, وہ پی اے ایف بیس مسرور میں. کیسا خوبصورت زمانہ تھا یار وہ. ये नासिर भाई हमारे साथ थे, हम नासिर जमाल नाम है इनका, पुराने दोस्त हैं, सातवीं क्लास बल्कि उससे भी पहले से। तो स्कूल में हम लोग बस्ता लटका के, कितना भारी बस्ता होता था यार, और कितना लंबा पैदल चल के जाते थे हम। आज बच्चे कैसे छुई मुई है यार, हैं? कैसे उठा के माए उनको बस में बिठा देती है, वहां से दो कदम नहीं चला जाता उनसे। हम इतने भारी भरकम बस्ते लटका के इतनी लंबी वॉक करते थे, और शरारतों के साथ। कितनी दफा हमने इनके पांव के शूज जूता उतारा है, वो नहीं यूं करके जा रहा है तो पीछे यूं पांव रख लिया उतर गया, कितनी दफा इन्होंने। रास्ते में लड़ाई भी होती थी, फड्डे भी होते थे। पांच छह लड़कों का ग्रुप था, जो एक हम पीएफ बेस मसरूर है ना, ये जो एयरफोर्स का बेस नहीं, इसके अंदर स्कूल था हमारा। कितनी लंबी वॉक करके जाते थे हम, वहां भी एक एक नंबर की शरारतें, पढ़ाई भी दिल्ली, शरारतें भी दबा के होती, खिड़की से कई दफा भाग जाते थे। अब दिल्ली लग रहा ना क्लास में, खिड़की खुली हुई है, निकले निकल लिए। बड़ा इंजॉय किया यार हमने स्कूल को यार। तो लेकिन टीचरों के साथ बदतमीजी नहीं थी, टीचर उस जमाने में मारते भी थे, हमने भी टीचरों से मारे खाई हैं, जाते ही डंडे। इसी से तसव्वुफ के मनाजिल तय होना शुरू हो गए थे। जाते थे, हमारे एक रिजा सर थे ना, रिजा, वो जो पीटी मास्टर थे, जाते ही बिना वजह के डंडे, हाथ में डंडी लेके खड़े होते थे। लेट एक दो मिनट तो लेट, कोई फौज थोड़ी है, एक दो मिनट तो बंदा लेट हो ही जाता है। खड़ा एक एक यहां खाया, फिर यूं यूं किया, फिर ऐसे खाया, फिर यूं यूं किया, फिर यूं खाया, किसी को चार, किसी को यूं यूं करके चले गए। आज बच्चे को आप एक डंडी लगा दो, वो दिल पे लेके बैठ जाता है, माँ बाप टीचर से लड़ने के लिए स्कूल में पहुंच जाते हैं। बच्चों को तो खुदा आपने फिरौन बना दिया भाई, हमने तो माँ बाप से कभी शिकायत नहीं लगाई कि आज चार के बजाय पांच डंडे लगा दिए, यूं किया, यूं यूं किया, यूं किया, यूं यूं किया, बोल टीचर है, चलो गए। ऐसे हाथ मसले सर्दी में बड़े लग रहे होते थे ना, यूं यूं करके निकल लिए अंदर। वो अब्दुल कदीर सर भी याद है ना आपको, नाइन्थ क्लास में, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसी शक्ल थी उनकी, नाम भी अब्दुल कदीर और शक्ल भी, और बड़े काबिल आदमी टीचर थे। वो हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे, बिला वजह आते ही मारना शुरू कर देते थे वो। अल्लाह ताला अगर जिंदा है तो उनकी लंबी उम्र दे, अगर इंतकाल हो गया तो अल्लाह मगफिरत फरमाए। लेकिन पढ़ाते भी बड़ा जानदार थे वो, जरा सी गलती होती तो, मैंने शायद गलत कह दिया, बिला वजह नहीं मारते थे, लेकिन जरा सी बात थे तो वो डंडे से लगाते थे हाथों पे ऐसे ऐसे। वो जो थे आपके विलायत सर, विलायत सर ने एक दफा मुझे याद है, किसी ने भी होमवर्क नहीं किया, बता उनको मीटर घूम गया उनका, ठीक है ना। 50-60 लड़के थे हम लोग, सबको खड़ा किया और सबके लाइन से डंडे मारना शुरू किए, तो हमने खा लिया आराम से। कोई खुदा न खासा हड्डी थोड़ी तोड़ रहे हैं यार, कुछ जानवरों की तरह थोड़ी पीट रहे हैं, हाथों पे तो इतना तो चलता है ना। एक दफा हेलीकॉप्टर बना दिया हमको उन्होंने, बगैर कुर्सी के बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठे रहे तो थाई सुस्ते, अल्हम्दुलिल्लाह अब जिम में थाइस कर लगा लेते हैं हम इस बहाने, ठीक है ना। तो अब ये जो बच्चे आ रहे हैं ना, ये बहुत अजीब टाइप की चीजें आ रही हैं मार्केट में। अब ये जरा सी भी स्ट्रेस बर्दाश्त, अगर मैं उस स्कूल में ना पढ़ा होता मैं चार शादियां नहीं कर सकता था। उस स्कूल में हमने सोटे भी खाए, डंडे भी खाए, मुर्गे भी बने, सही है ना। उससे क्या हुआ, बड़े बड़े काम करने का कॉन्फिडेंस, हौसला पैदा हुआ। फिर हमने जब दूसरी शादी की, हमने कहा डंडे खाएंगे, वो तो हम पहले खा चुके हैं, आदि हैं, सोटे भी खा चुके हैं, आदि हैं। तो कुछ भी बड़ा काम करने के लिए ना, थोड़ा सा बच्चे पे थोड़ी सी सख्ती करो। मैं नहीं कह रहा डंडों से बिला वजह कूटना शुरू कर दो, लेकिन अभी एक 10 साल के बच्चे ने खुदकुशी की है, कुछ भी नहीं था, लेट आया, मां ने डांटा है, बस डांट बर्दाश्त नहीं हुई, जाके लटक गया रस्सी से, वो सीढ़ियों पर जारबंद कोई लटका हुआ था, उससे जाके अपने आप को बांध के लटका दिया। वजह क्या है, रस्सी छुई मुई। ये 2-3 बच्चे इसी तरह ही पलते हैं, ज्यादा बच्चे हो ना बिला वजह खाते रहते हैं 2-4, सही है ना। तो ये 2-3 बच्चे बहुत ही छुई मुई टाइप के होते हैं, इनमें बर्दाश्त नहीं होती, माँ बाप ना डांटते हैं ना मारते हैं, ऐसा छुई मुई सा बच्चा निकलता है। फिर वो जरा सा गम आया, बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है वो। ये ऐसे ही है, जो जिम जाके वेट उठाता रहेगा तो कभी ज्यादा वेट उठाना पड़ गया उठा लेगा वो, लेकिन जिसने कभी वेट ही नहीं उठाया मेरे भाई, वो तो 1 किलो की दूध की थैली पकड़ा दोगे ना, उसके पट्टे जवाब दे जाएंगे। तो ऐसे ही छोटी बहुत टेंशन जो बच्चा बचपन से, हल्की ज्यादा नहीं हो, डिप्रेशन में ना चला जाए कहीं, वो हल्की फुल्की टेंशन बच्चे को मिलती रहे ना, तो बच्चे में टेंशन बर्दाश्त करने की सलाहियत बढ़ती है। बाप का रोब हो, माँ का रोब हो, भाई का रोब हो, टीचर का रोब हो, थोड़ा सा रोब में फिर उसको एंजॉय भी करने दो, हर वक्त रोब में ना रखो वरना ठिठर जाएगा वो, उसको खुशियां भी दो, थोड़ा सा रोब भी रखो, तो उससे बच्चा सही बनता है। हमारे अब्बा हमारी चित्रौल भी लगाते थे, लेकिन उसके साइड इफेक्ट खत्म करने के लिए बाद में बड़ा प्यार भी करते थे बिठा के, देखो बेटा मैंने जो आपको आज कूटा है ये आपके फायदे के लिए कूटा है, और ये पैसे लो जाओ कुछ चीज लेकर आ जाओ कुछ खा लो, ठीक है ना, आइसक्रीम खा लो, ये खा लो, गोला गंडा खा लो, खाते भी वो चीजें थे जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो, उससे गले भी मजबूत हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, गोला गंडा खा रहे हैं जाके, ठीक है ना, वरना इतनी देर कौन बोल सकता है भाई। तो आज बहुत ही बच्चों को छुई में बना दिया है, इससे बच्चे में तकब्बुर पैदा हो रहा है, उसको कोई डांट दे तो बच्चा अपनी इंसल्ट महसूस करता है, मेरे फादर ने आज, मेरे फादर का एटीट्यूड ठीक नहीं है, मेरे टीचर का जो एटीट्यूड है वो ठीक नहीं है, तो ये तकब्बुर है मेरे भाई, ये अखलाक नहीं है, बिगड़ रहा है ये। तो बड़े भाइयों से भी लोग पिटते थे पहले, बाप को क्या, बड़ा भाई भी बाप की जगह हो, चाचे मामे पीटते थे आगे, आज मामू ने अगर भांजे को पीट दिया तो शौहर लड़ता है अपनी बीवी से कि तेरा भाई कौन होता है मेरे बच्चों पे हाथ उठाने वाला, चाचे ने बच्चे को जरा डांट दिया तो औरत लड़ती है तुम्हारा भाई कौन होता है हमारे बच्चों पे हाथ उठाने वाला, तो दोनों मिलके बच्चों को फिरौन बनाओ। पहले क्या होता था, हमारे मामू ने भी हमें कूटा है, अल्लाह का सजा, डांटा तो है, कूटना तो मुझे याद नहीं, डांटा है हम नहीं कभी, हमें पता था अम्मा को शिकायत की, अम्मा कहेगी भाई मामू है तो वो अम्मा और अम्मा उसने तो डांटा है, अम्मा तो चमाट लगाएगी, मामू की शिकायत क्यों लेकर आ रहा है। बड़े भाई ने मुझे याद है एक दफा मैं ट्यूशन में, मैं बहुत गफलत से लिखता था ना, राइटिंग नहीं मैं सही करता था, मैं जब लिखता था ना ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता था जरा सभी, मुझे पढ़ना इतना मुश्किल, मैं तो मदरसे में आके पढ़ना शुरू किया मैंने अपने शौक से, वरना मुझे तो पढ़ने में दिल ही नहीं लगता था, नंबर अल्हम्दुलिल्लाह आते थे अच्छे, नंबर अच्छे आते थे लेकिन पढ़ाई में दिल लगता नहीं था, नकल करके नहीं आते थे वैसे ही आ जाते थे। तो मुझे याद है मैं, मेरे बड़े भाई मुझे पढ़ा रहे थे, 12 साल उम्र में बड़े हैं मुझसे, मुझे आठवीं में था या नाइन्थ में था मैं, अब जैसे कोई लफ्ज लिखना है ना, प्लीज कन्वे माय कंप्लीमेंट्स टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड लव टू डियर नदीम, जैसे एप्लीकेशन लिख रहे हैं, अब मैं लिखता हूं ऐसे बेदर्दी से ना, मुझे खेलकूद में ज्यादा मजा आता था, जैसे बच्चों का शौक होता है, तो कभी टी का ऊपर का डंडी छोड़ रहा हूं, कभी एफ की एक डंडी छोड़ के लिख रहा हूं, टी लिख रहा हूं तो ऊपर का टी तो पूरा यूं करके ऊपर भी तो लगाओ ना, ऊपर लगाने की तौफीक ही नहीं हो रही, अबे क्या मुसीबत है। मेरे भाई मुझे कह रहे हैं भाई ये कंप्लीट लफ्ज वर्ड लिखो आप, पूरी स्पेलिंग पूरी करो, अच्छा टी लिख दिया, फिर आगे मुझे याद है मैंने यूं लगाया, ऊपर की डंडी नहीं लिखी, आगे जाने लगा, जैसे अपना नाम लिख रहा हूं फर्ज करो, तारिक लिख रहा हूं, टी की डंडी नहीं लिख रही, ए आर आई क्यू, डंडी छोड़ दी, अबे टाइम नहीं है देखेंगे यार, ठीक। तो मुझे याद है एकदम मुझे जन्नाटेदार आवाज आई ना, पटाख की जोरदार आवाज आई, मैं समझा किसी और को लगा है, क्योंकि मुझे हाथ नजर नहीं आया, इतनी स्पीड से आया, थोड़ी देर में जब मेरा दिमाग घूमा है ना, तो फिर मुझे महसूस हुआ कि ये मुझे लगा है, ये किसको लगा है, मेरे वालिद साहब दूसरे कमरे में बैठे हुए थे, ऐसे मौके पे होता क्या है, बाप उठ के आता है बड़े भाई को, बोल तू कौन होता है मेरे बेटे पे हाथ उठाने वाला, लेकिन हमारे अब्बा ने ऐसा नहीं किया, कुछ भी नहीं, मुमकिन है अलग से मेरे बड़े भाई को समझा दिया हो कि यार हाथ हल्का रखो, टी की डंडी नहीं लगाई ना तुमने, तो पूरा डंडा ही लगा दिया उसको खींच के, हो सकता है अलग में समझाया हो, सामने नहीं, क्यों, अगर सामने बोलते तो मेरे दिल में बड़े भाई की क्या आ जाती, नफरत कि ये गलत मारा है इन्होंने, इनका हक नहीं है, बाप भी मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो आज माँ बाप मिल के एक दूसरे का बागी बनाते हैं, शौहर अपने बच्चों को माँ का बागी बनाता है, औरत अपने बच्चों को बाप का बागी बनाती है कि तुम्हारे बाप को क्या पता, मुझसे पूछा करो, ये तो बिला वजह डांट टपट करते रहते हैं, ठीक है ना, और चाचा डांटेगा तो बीवी बोलेगी कि ये तुम्हारा भाई क्यों, तो सब एक दूसरे को एक दूसरे का बागी बनाओ, फिर जब बच्चा बिगड़ता है ना, ओ हो फिर किसी के काबू में नहीं आता। एक छोटा सा केस सुना दो ताकि ये वाक्य कंप्लीट हो जाए, आपके समझ में आए, मेरे पास ऐसे बहुत से केस हैं, मैं चूंकि कैरेक्टर चेंज कर देता हूं ताकि जिसका वाक्य है वो ना समझे कि मेरे बारे में बात हो रही है, और एक वाक्य हो तो आदमी कहे भी ना, ऐसे तो बहुत सारे वाक्य आते हैं, आते रहते हैं। खवातीन क्या करती हैं, मियां बीवी में जब अलहदगी हुई ना तो बच्चा शोहर को हवाले नहीं करती, वही जैसे कोर्ट में 18 साल तक मेरे पास तरसा तरसा के बच्चे को बाप से मिलाती हैं, फिर जब बाद में फ्यूचर में बच्चों पे मसाइल आते हैं ना, जैसे बेटी है तलाक हो गई उसको मसाइल आ गए, तो फिर कौन याद आता है, बाप। चंद दिन पहले ऐसे ही मेरे पास केस आया, खातून कहती है मेरी बेटी बड़ी हुई थी, शादी कर दी, तलाक हो गई, उसकी एक छोटी बच्ची थी, हमने रख ली, हमने कहा इसके शौहर के हवाले नहीं करेंगे, अब फाइनेंशियली बड़े मसाइल आ रहे हैं, बच्ची बड़ी हो गई, 24-25 साल की हो गई बच्ची, अब खातून कहती है मैं अपनी जायदाद इस नवासी के नाम करना चाहती हूं, तो मेरे दूसरे खानदान वाले और खानदान में कोई बच्ची को रखने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा आप इसके बाप के हवाले करो, कह रहे बाप नहीं ले रहा, कह रहे जब बच्ची थी मुझे दी नहीं है भाई, 24 साल इसको मुझसे दूर रखा, और अब जब पैसे खत्म हो गए हैं और मसाइल खड़े हो गए हैं तो मेरे हवाले कर रहे हो आके। मैंने कहा आपने कितनी बड़ी गलती की, आपको बचपन में ही बाप के हवाले कर देना चाहिए था इसको। बाप जिस तरह साया बनता है औलाद के लिए, मां तो किसी और घर में जाती है ना शादी करके, उसकी मां ने भी तो शादी करके, सोतेला बाप थोड़ी उस तरह से सपोर्ट करेगा उसको। बल्कि आजकल ठरक का दौर है, सोतेले बाप से तो इज्जत की हिफाजत रह जाए गनीमत है। सबकी मैं बात नहीं कर रहा किसी के, आप शक करना शुरू कर दें, सोतेले बापों की तो कंप्लेन आ रही है, वो तो गलत नजरों से उस बच्ची को देखना शुरू कर देते हैं, जिसके शख्स के बारे में ये एतमाद नहीं है कि पता नहीं गंदी नजर से देखेगा, उस पर आप उसको उसका सरपरस्त बनाएंगे क्या? सारे ऐसे नहीं होते, अल्लाह का शुक्र है नेक लोग भी होते हैं, लेकिन ये दौर शहवत परस्ती का दौर है, इसमें कैसे एतमाद होगा। लेकिन नहीं, उस वक्त औरत बड़ी फंटर बनती है, नहीं जी बच्चे तो मैं रखूंगी, मैं इसको मैं खुद पालूंगी, बाद में मसाइल खड़े होते हैं उसके बाद वो ना इधर का ना उधर का। इसलिए इस्लाम ने हुक्म दिया है कि औरत कहीं भी शादी करती है बच्चा फौरन किसके हवाले करेगी, वो बाप के हवाले, उसमें बच्चे का फायदा है। अब बच्ची इतनी बड़ी हो गई ना, वो बाप से मानूस है और बाप करोड़पति है, लेकिन उसके पैसों से फायदा नहीं उठा सकते, वो कहेगा जब मैं मांग रहा था दे नहीं रहते, अब पैसे कम हो गए तो मुझसे भीख मांगने के लिए आ गए हो। ये एक केस नहीं है, एक केस नहीं है, बीसियों केसेस हैं। तो इसलिए बच्चों को बाप से दूर ना किया जाए। बाप, और मैंने देखा है बाप के हवाले कर दोगे ना, वो मां से मिलने देगा, वो मां के पास रात भी गुजारने देगा, लेकिन मां हवाले करोगे तो वो बाप से छीन लेती है। सारी नहीं छीनती, लेकिन बहुत केसेस आते हैं इसमें छीनने के, वो नहीं देती फिर। तो इसी तरह याद रखो, मियां बीवी में अगर मां बच्ची को बाप के खिलाफ बरगलाना शुरू कर देना कि तुम्हारा बाप ऐसा, कल ये बच्ची बिगड़ेगी, बाप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कल तुम्हें जरूरत पड़ेगी इसके, इस अपने शौहर की, बाप की जरूरत पड़ेगी कि अब इसके मामले में आप इन्वॉल्व हो, इसकी केयर करें, तो वो नहीं, क्योंकि आपने उसके दिल में बाप की अजमत पैदा ही नहीं की है। बाप चरसी हो, हीरोइन ची हो, जैसा भी हो, बेटियों के लिए बड़ा गैरतमंद होता है वो जान पे खेल के बेटियों की इज्जत की और उसके फ्यूचर की फिक्र करता है वो। माएं ये बात नहीं जानती, वो थोड़ी बहुत आड़ी तिरछी खामियां उसकी देख रही होती हैं कि ये तो दोस्तों में गटर के ढक्कन पे बैठा रहता है, ये क्या तरबियत करेगा, और भाई जैसा भी है उसकी बेटी है वो। तो इसलिए अल्लाह का वास्ता, जो खवातीन बयान सुन रही हैं, अपनी बच्चियों को बेटों को बाप के खिलाफ ना वरगलाएं, कल बाप की अजमत खत्म हो गई, ये तुम्हारे हाथ से भी गए। तो बाप के रोब तो था तो कंट्रोल कर लेता, वो रोब खत्म खत्म, ये कल तुम्हारे लिए भी अजाब जान बन जाएगा। समझते हो या नहीं समझते हो? तो आखिरी बात यह कि तसव्वुफ में जो मैंने बात की है ना, तो पीर के बारे में यह तसव्वुर रखना कि इसको हर वक्त हमारी हर चीज का पता चलता है, ये गलत है। पीर जब किसी को खिलाफत देता है तो पीर का गालिब गुमान ये होता है कि ये नेक है, कराइन से अंदाजा होता है उसको, और उसको अल्लाह ने खास फिरासत भी दी होती है, लेकिन इसमें पीर से गलती का इम्कान होता है क्योंकि है वो बहरहाल इंसान। लिहाजा किसी को खिलाफत मिली और आपने देखा ये तो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है, तो आप छोड़ दें उससे ताल्लुक। ये ना देखें इतने बड़े हजरत जी ने इसको खिलाफत दी, बोले भाई हजरत जी से गलती हो गई, हमें पता है ये तो बंदा ही दो नंबर है, ये तो जिना करता है, ये तो चोरी करता है, क्योंकि ऐसे होते हैं लोग, पीर को बेवकूफ बना दिया, पीर समझे बहुत नेक है, तो इंसान है ना पीर भी। लेकिन अक्सर इसमें मिस्टेक, जो सही पीर है अक्सर उनसे मिस्टेक होती नहीं है, लेकिन हो सकती है, तो ये कोई आलिमुल गैब वाला मामला नहीं है। समझते हो गए नहीं समझते? जल्दी से जवान का नाम दे दू मेरे भाई, मुफ्ती साहब हालिया सूरत में इसराइली प्रोडक्ट, ये इसराइली प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करने वाले मैकडॉनल्ड वगैरह का बायकॉट करना, ये बहुत सवाल पूछा जा रहा है। देखो बायकॉट का फायदा जब होता है जब भरपूर तरीके से हो, बायकॉट से नुकसान तो होता है इन लोगों को, लेकिन होता यह है कि ऐसी तहरीकें चलती हैं, एकदम शोर शराबा होता है, चार दिन लोगों ने पेप्सी पीना छोड़ दी, उसके बाद सारे पहले से ज्यादा पीना शुरू कर देते हैं। तो बायकॉट अगर ये गवर्नमेंट पे दबाव डाला जाए, गवर्नमेंट लेवल पे बायकॉट हो ना, एक मुहिम चले हुकूमती सतह पे, तो मैं समझता हूं फायदा होगा इसका। दो चार लोगों के छोड़ने या दो चार लोगों की कंप्लेन चलाने से नहीं होता, बल्कि और मजाक बनता है। बायकॉट होना चाहिए लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे बायकॉट हो, तो फिर उसका मुतबादिल भी लोगों को बताया जाए कि भाई ये है इसको छोड़ दो, तो इसका मुतबादिल ये, मुतबादिल ना हो तो भी छोड़ दो, क्या जा रहा है उसमें, कोई ये मैकडॉनल्ड फर्ज तो नहीं है ना खाना, बल्कि और नुकसान दे। लेकिन ये बायकॉट प्रॉपर वे में जब ही होता है जब एक मजबूत मुहिम चले, वरना कुछ भी हासिल नहीं होता और मजाक बनता है। तो अब मुहिम तो गवर्नमेंट पे दबाव डाला जाए कि गवर्नमेंट बाकायदा ऐलान करे, सब लोग इस कॉज में हुकूमत का साथ दें और बोले भाई हम फिलिस्तीनियों के हक में सब लोग हैं और सब मिलके जो है वो बायकॉट करें, फिर इंशाल्लाह अरब कंट्रीज भी हों, सऊदी अरब है, मस्कत है, दुबई, यूएई वगैरह, ये तो अगर कर लें तो ये तो ऐसी की तैसी हो जाए इनकी। शाह फैसल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने पेट्रोल बंद किया था, इसराइल ने घुटने टेक दिए थे, मुजाकरात की मेज पे आ गया था, तो पेट्रोल बंद कर दो या इनकी मसनूआत को अलल इतलाक छोड़ दो, उसका ऐलान हो कि भाई सारी मसनूआत नहीं छोड़ी जा सकती, नामुमकिन है, मशहूर प्रोडक्ट जो है जिसमें इनको ज्यादा फायदा है उसके अनाउंसमेंट हो, लिस्ट जारी हो, उस पर पब्लिसिटी हो, मीडिया उसको उछाले, जियो न्यूज से, समा न्यूज से, बोल न्यूज से, हर जगह एक दावत चले, फिर सऊदी अरब में भी हो, यूएई में भी हो, पाकिस्तान में भी हो, हर जगह होगी तो फायदा होगा, अदरवाइज फिर मजाक उड़ता है और कुछ भी हासिल नहीं होता। नासिर भाई से अकेले में नहीं मिलना, बचपन के दोस्त हैं। मजाक कर रहा हूँ भाई, ऐसे ऐसा कोई हमारा सीक्रेट राज है नासिर भाई? कुछ भी नहीं है यार। वो कीमा याद है ना जो हम जाया करते थे खाने के लिए, वो चर्सियों का होटल याद है जहाँ चाय पीते थे, वो जो बैठ के चर्सी भी बैठे होते थे, हम लोग भी पीते दारुल इफ्ता वाले इरशाद में है। बड़ी शरारतें किए यार हमने स्कूल में, बड़ा मजा आता था, तो पुराने दोस्तों को देख के बड़ा दिल बाग बाग हो जाता है, तो चिड़े रखी हुई थी, अल्लाह माफ फरमाए एक दूसरे की, वो तो गलत है, चिड़े रखना तो बहुत गलत काम है यार, बताना नहीं यार। नासिर भाई आगे काइंडली, हालात तब्दील हो चुके हैं, लड़की को तलाक हो गई, एक बच्चा भी है, अब दूसरी शादी हो रही है, तो बच्चे के बारे में क्या हुक्म है? क्या बच्चा बाप को दिया जाएगा, बच्चा बाप को हवाले किया जाएगा, कहीं और शादी कर रही है, समझते हो? बच्चा बाप के हवाले किया जाएगा, जब सगा बाप मौजूद है तो सौतेले के हवाले नहीं किया जाएगा उसको, सगा बाप मना करेगा उसका बाप भी लेगा। उलमा ने मसला बयान किया, बाप अगर बच्चा लेने से इंकार कर दे तो जबरदस्ती उसको दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे का नुकसान है बाप के ना लेने में। बाप तो हो सकता, बाप दो नंबर बाप होते हैं, कहते नहीं चाहिए मुझे, तुझे चाहिए, तेरे बाप को भी चाहिए, सही है ना? क्यों? उसकी कस्टडी में जाएगा तो ये बच जाएगा, बाप से महरूम हो गया, यतीम के कितने फजाइल हैं, क्यों बाप नहीं होता उसका? बहुत मसाइल खड़े होते हैं। खवातीन देखो, बच्चे से मोहब्बत औरतें बहुत करती हैं, इसमें दो राय नहीं, मां से ज्यादा कौन बच्चे को चाहेगा, मां से ज्यादा बच्चे की कोई भी केयर नहीं कर सकता, लेकिन बात यह है कि बच्चे को जिन जिन खतरात, जो जो खतरात से वास्ता होता है ना, वो बाप को पता होते हैं, उन खतरात से खेल भी बाप सकता है, मां खेल नहीं सकती उन खतरात से, और ना उन खतरात का मां को पता होता है। ये दूसरी बात, ये बच्चे पे रोब भी तो चाहिए ना, बताओ मां का रोब ज्यादा होता है या बाप का? बच्चे में बाप का रोब होता है, ये तो नेचुरल है बिल्कुल, तो जिसका रोब होता है वही ज्यादा इसलाह कर सकता है, क्योंकि बच्चे को सिर्फ अखलाक नहीं चाहिए, रोब भी चाहिए। अगर बच्चे को दलाई से समझाना शुरू कर दो, किसी का बाप भी नहीं समझा सकता। आप कह रहे हो, एक तरफ कहते हो बाप समझा सकता है, एक तरफ कहते हो बाप भी नहीं समझा सकता, तो दोनों का मफहूम अलग अलग है, ठीक है ना? अब आप बच्चे कोई काम नहीं कर रहा, आप समझाओ, देखो बेटा स्कूल जाना चाहिए, अबू मैं नहीं जा रहा स्कूल, क्यों जाना चाहिए? देखो बेटा वही वो किस्सा हो जाएगा ना, समंदर के किनारे पे एक साहब ने बच्चे को समझाया, वो बच्चा थोड़ा नौजवान बच्चा था, उसको समझाया, बेटा तुम यहां सिगरेट क्यों पी रहे हो समंदर के किनारे, तुम कुछ कर क्यों नहीं लेते, उसको दलाई से समझा रहे हैं। तो उसको कहा, बेटा देखो तुम पढ़ लो, उसने कहा पढ़ के क्या होगा? उसने कहा मैट्रिक कर लेना 10 साल में, फिर क्या होगा? फिर इंटर कर लेना, फिर क्या होगा? फिर जाना मास्टर्स कर लेना, फिर क्या होगा? फिर पीएचडी कर लेना, फिर क्या होगा बेटा? फिर 16 साल के बाद जॉब करना, जॉब के बाद क्या होगा बेटा? फिर घर बनाना, घर के बाद क्या होगा बेटा? शादी करना, फिर क्या होगा? बच्चे को होंगे, फिर क्या होगा? मजे उड़ाना, कह रहे अभी क्या उड़ा रहा हूँ, कहते अभी क्या उड़ा रहा हूं, मजे ही तो उड़ा रहा हूं। अब दलाइल से जवाब दे सकते हो? तो बच्चे को भी आप समझाओ, बेटा यूं करना यूं करना, वो नहीं मानेगा। बच्चे को आंखें दिखानी पड़ती हैं, बेटा उठ जा, तैयार होके कहां जा, वरना हम तो स्कूल पढ़ते ही नहीं, हमारी माएं हमें समझाती रहती, अम्मा से तो हम पिटे भी हैं स्कूल की, हर दूसरे दिन छुट्टी करके बैठा होता था मैं, अम्मा से पिटते थे, भेजाते थे स्कूल, रोते हुए जाते थे लेकिन जाते थे, इस बहाने थोड़ा सा पढ़ लिए। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये बच्चे को रोब भी चाहिए, तो रोब किस में होता है? बाप में। मसाइल बाहर के बाप कर रहा होता है, तो नुकसान तो होता है माँ को, लेकिन बच्चे का फायदा इसमें, माँ मिलती रहे बच्चे से। और अगर शादी नहीं करती वो कहीं और, तो फिर जब तक 7 साल का नहीं हो जाता माँ के पास रहेगा, क्योंकि 7 साल के बाद बच्चे को तरबियत की जरूरत होती है। अच्छा शादी भी कर लेती है ना, तो फिर दादी का हक है, नानी का हक है, क्योंकि छोटे बच्चे को तो औरत चाहिए ना, तो मतलब ये कि अपने साथ ससुराल नहीं ले जा सकती, वो मां के हवाले कर दे 7 साल तक, नानी पालेगी, नानी नहीं पाल रही तो दादी पाले, समझते हो कि नहीं समझते, तो दादी पाले उसको, दादी भी नहीं है तो बाप का फिर कुछ करे उसके लिए इंतजाम, किसी औरत को घर में लेकर आए उसको पालने के लिए। तो ये नहीं है कि बाप से महरूम कर देते हैं, इसमें बच्चों का बेड़ा गर्क होता है, सारी जिंदगी का एहसास से कमतरी का शिकार होते हैं, वो तरबियत नहीं हो पाती उनकी, बिगड़ जाते हैं, बड़े मसाइल खड़े होते हैं। काफी हो गया मेरा ख्याल, हम भी इंसान के बच्चे हैं यार। सुभानकल्लाहुम्मा हम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।